الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. بہت ہی مہربان رب کی مہربانی کہ اس نے آپ کو مجھے ایک بار پھر اس بات کے لیے یہاں جمع کیا. کیا آپ ذہنی، جسمانی، قلبی، روحانی طور پر تیار ہیں؟ خود سے پوچھئے کیا آپ اور میں واقعی اس وقت اس چیز کو لینے کے لیے بالکل تیار ہیں؟ یہ چند چھوٹے چھوٹے سوال اصل میں میں خود سے پوچھتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک ہم تیار نہ ہو تو ہماری مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی کیٹل میں سے چائے نکالنا چاہے لیکن اس کا کپ دوسری طرف ہو. اور جتنا زیادہ ایک انسان اپنے آپ کو اس چیز کے اندر لے کے آئے گا، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ بات آسان کر دے گا. تو جس طرح کیٹل اور کپ کے بیچ میں، کیٹل اور کپ کے بیچ میں دیکھنی پڑے گا، اللہ اکبر، اتنا زیادہ آپ کو مجھے اپنی زندگی سے بہترین فائدہ اٹھانا پڑے گا. کل شام کو ایک سیشن کیا ہم نے، شروع میں تھوڑی سی مشکل ہوئی لیکن الحمدللہ بعد میں ایڈجسٹ ہوا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ قرآن پاک کا ہر انداز ہی بڑا خوبصورت ہے، اور جتنا زیادہ آپ اور میں اس کتاب کے قریب جاتے جاتے ہیں، تو بالکل ایک ایسی ہی مثال دماغ میں آ رہی ہے، بتا دیتی ہوں تاکہ آپ سارے ہی ریڈی ہو جائے اور میں اور آپ اس چیز کو دیکھیں کہ کتنا ضروری ہے اس بات کو سمجھنا. اور وہ یہ کہ آپ کسی شہر میں نئے نئے آتے ہیں، سوچئے ذرا، آپ اپنے اپنے شہر میں جہاں بھی موجود ہیں اس وقت، اور خاص طور پہ اگر موو ہو کے گئیں اور آپ شروع سے وہاں نہیں رہ رہے جہاں پیدا ہوئے تھے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ شروع میں آپ کو نہ گلیوں کے نام آتے تھے، نہ محلوں کے نام آتے تھے، اور آپ بس اپنے آپ کو ایسے ہی محسوس کرتی تھی کہ لاسٹ ہیں. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ آج ہوتے ہوتے، کرتے کرتے، آپ اس شہر کی ہو سکتا ہے کہ گلی کونے کو جانے. محاورتن ہی کہتے ہیں ہم لوگ، ورنہ ہر گلی کو تو ہم نہیں جان پاتے. لیکن اصل بات یہ ہے، جتنا زیادہ آپ کی میری زندگی میں اللہ کے کتاب کا قرب ہوگا، ہم اس کے ڈفرینٹ اینگل سمجھیں گے، کبھی ان ڈیپتھ، کبھی شارٹ، اور کبھی ہم اس چیز کو لا کر اپنی زندگی میں لے آئیں اگر، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی مثال پھر اس شخص کی ہو جاتی ہے جو نیا نیا کسی شہر میں آتا ہے. اور جتنا زیادہ آپ کسی شہر میں نیا نیا آتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا، چونکہ فیڈ بیک ملتا ہے، سوال جواب بھی آتے ہیں. تو الحمدللہ میں اسی دور قرآن ہی کے ایک دو سوال اور جواب کی روشنی میں اس چیز کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ میں سے جو لوگ سن رہے ہیں، میرے گمان کے مطابق وہ دو طرح کے ہیں. لکھیے، آپ کی یہ چیزیں اب آپ کے میرے لیے بالکل تیار ہیں اس بات کے لیے کہ ہم اپنے دل دماغ کو کھول کر اسے فائدہ اٹھا لیں. تو جو ساتھی پہلی دفعہ قرآن سن رہے ہیں، یا ابھی ان کی پہچان کہہ لیجئے کہ اتنی قرآن پاک اور نہیں ہوئی کہ انہوں نے پورا قرآن سنا ہو، یا کہہ لیجئے کہ زندگی میں پڑھتے پڑھاتے اتنا وقت گزر گیا کہ اس کے بعد ہم آئی نہ سکے ان چیزوں پہ، یعنی باضابطہ علم نہیں لیا، بلکہ میری مدد کیجئے اس جملے کو سمجھنے میں کہ اگر آپ نے کبھی باضابطہ طور پہ، جس کو پروفیشنلی کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم ماسٹرز کرتے ہیں، جیسے ہم ایف اے کرتے ہیں، بی اے کرتے ہیں، میڈیکل کرتے ہیں، اگر آپ نے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا، تو پھر اس دورے قرآن کو سننے کے دوران زیادہ پریشان نہ ہوں. بس آپ دیکھیے کہ پہلے ہی پارے کا ٹاپک تھا ادھوری اطاعت کا فتنہ. تو اب آپ بتائیے کہ آپ میں سے جس بیچارے نے ابھی تک قرآن کو الف بے نہ سمجھی، وہ ادھوری اطاعت سے یہ سوچے کہ اچھا پھر میں تو یہ ہوں، پھر اس کا مطلب ہے میں جہنم میں جاؤں گی، تو میری جان، ایسا نہیں ہے. یہ ذہن میں سے کبھی نہ بھولیے اس پورے دور قرآن کو سنتے ہوئے کہ یہ دور قرآن اسٹوڈنٹس کے سامنے ہو رہا ہے، اور لسنرز اور گیسٹ جو ہیں وہ اس میں ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایڈ کر دیے جاتے ہیں کہ جہاں تک یہ پیغام چلا جائے. ادروائز آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ سب کو جمع نہیں کیا جا سکتا، چلتے چلیے، قدم قدم اٹھائیے. اسی طرح سننے کے دوران کچھ مسائل، کچھ الفاظ ایسے بول دیے جاتے ہیں جو کہ نئے بندے کو اور طرح سمجھ آتے ہیں، اسٹوڈنٹس اور ایڈمنس کو اور طرح سمجھ آتے ہیں. تو کوئی بات بھی اگر آپ کو نہ سمجھ آئے یا آپ کے سنے ہوئے سے مختلف ہو، تو فوراً یہ کہہ دیجئے کہ ابھی اس کو سمجھنے میں مجھے وقت چاہیے. یہ شعور کو بیدار کرنے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں, لیکن خوشی مجھے ایسی چیزوں سے یہ ہوتی ہے کہ کم از کم لوگ غور سے سنتے تو ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو مجھے اس سے بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے. آئیے بہت محبت سے, بڑے پیار سے شروع کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے جیمز ہیں جو ہم نے لینے بھی ہیں اور دینے بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دورہ قرآن 2020 میں سے ہم چوتھے پارے کو کنٹینیو کریں گے. چند آیات ہم کر چکے, آیتوں کا نمبر بول دیتی ہوں جہاں سے ہی ہم اب دوبارہ لینے والے ہیں انشاءاللہ. ہم شروع میں چند باتیں ایک خلاصے کے طور پہ آیت نمبر 104 سے 110 کی کریں گے, جس کا ترجمہ کر چکے, اور آج ترجمہ شروع ہوگا 111 سے. تو آپ اس کے لیے اپنے مصحف ریڈی رکھیے اور اپنے آپ کو بالکل اس کے لیے تیار رکھیں. ہم نے اس پارے میں جو چیز دیکھی ہے ابھی تک وہ کیا ہے کہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اعلیٰ مقام دیا. دوسرے پارے میں بھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کہا تھا, اور اب اس کے بارے میں ایک بہت ہی بڑا فتنہ اور اب بات جو کہ اس وقت امت مسلمہ میں پلیگ کی طرح پھیلتی جا رہی ہے دن بدن, وہ ہے نا اتفاقی. دیکھا جائے تو ہر لیول پہ ہی نا اتفاقیاں دکھتی ہیں, اور لیگ پولنگ اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا, ایسی چیزیں بڑی معروف ہیں جو کہ مسلم ڈکشنریز میں نہیں ہونی چاہیے. مسلمان تو مسلمان ہوتا ہے, اس کو کیا لگے دوسری چیزوں سے. لیکن بعض دفعہ دیکھا گیا کہ غیروں کے لیے ہمارے دل نرم ہیں, ان کو تو ہم کسی بھی طرح سے جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں, لیکن اپنے ہی جیسے مسلمان, اپنے ہی جیسے ہم وطن لوگوں کو بعض دفعہ ہم مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ جہنم کی طرف کا یو ٹرن لے لیں. تو جب ایسے حالات ہو جاتے ہیں تو جو مین مقصد ہوتا ہے کسی بھی چیز کا, وہ کیسے غافل ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال سے بات لے لیجئے. ماں بیٹھی ہوئی ہیں کہیں اور دور ایک تکیہ رکھا ہے, اور ماں کو محسوس ہوتا ہے کہ میں تکیے سے ٹک لگا لوں. دو بچے بھی کھیل رہے ہیں پاس ہی, وہ آواز لگاتی ہے مجھے تکیہ دینا. بس یہ آواز سننے کی دیر ہے کہ دونوں بچے کشن یا تکیہ لینے کے لیے بھاگتے ہیں, اور وہاں جا کر دونوں ہی لڑنے لگ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے میں لے کے جاؤں گا, یہ کہتا ہے میں لے کے جاؤں گا, وہ کہتا ہے ماما نے مجھے کہا, یہ کہتا ہے مجھے کہا. یعنی ایک مقدمہ شروع ہو گیا. اور اکثر ایک جملہ بولتی ہوں کہ اگر مائیں وکیل ہوتیں تو کبھی بھی بے روزگار نہ ہوتی. ایک دن میں اپنے ہی بچوں کے اتنے مقدمے آ جاتے کہ جن کو بھگتتے بھگتتے شام ہو جاتی. اب مجھے بتائیے کہ ماں کو تکیہ چاہیے تھا, لکھیے گا یہ جملہ کیونکہ آگے اس کو ٹیلی کروں گی, بچوں کو بھیجا کہ جاؤ یہ تکیہ مجھے بھی دے دو, یا کسی مہمان کو دے دو. چلیے یہ بھی اچھا رہے گا کہ مہمان کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان کو دے دو, انکل کو دے دو, آنٹی کو دے دو. اب ہوا کیا کہ وہ دو تکیہ لینے والے اور مہمان کو لا کر دینے والے آپس میں لڑ رہے ہیں. نقصان کیا ہوا؟ وہ جھگڑتے رہیں گے, تکیہ مہمان تک نہیں پہنچے گا. بس اسی چیز کو سامنے رکھ لیجئے تو بات مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پیارا دین مجھے اور آپ کو دیا اور فرمایا کہ جاؤ اس کو دوسروں تک شیئر کر دو. اور یہ وہ دین ہے کہ جب تم دوسروں کو دو گے تو تم ان کی دعائیں بھی لوگے, اور اس معاشرے میں امن چین بھی قائم ہوگا. لیکن حقیقت میں کیا ہوا؟ نا اتفاقیوں نے اور تفرقے بازیوں نے دین والوں کو آپس میں ہی اختلافات کرنے میں اتنا الجھا دیا کہ کون کرے گا, کون دے گا, کون لے گا, کہ نقصان کیا ہوا کہ آج انسانیت تک دین کا یہ کمفرٹیبل تکیہ نہیں پہنچ رہا. اور آپ دیکھیے کہ آپس کی بحثیں, آپس کے مباحثے, ایک دوسرے کو ہی سچا جھوٹا ثابت کرنے کی کوششیں اس حد تک بعض اوقات بڑھ جاتی ہیں. میں سب کی بات نہیں کرتی اور سب ایسے ہے بھی نہیں الحمدللہ, لیکن کچھ لوگ جن کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا فرقہ اور ہمارا مسلک اتنا اہم ہے کہ بس اس کا نام لگائے بغیر کام نہیں ہوتا. دیکھیے کہ اگر آپ کسی چیز پہ اپنا لوگو لگاتے ہیں, اپنا ٹیگ لگاتے ہیں, اس کو بھی سمجھ لیجئے, उसका मकसद क्या होता है कि हमारे जैसा काम कोई नहीं करता, या ये मकसद होता है कि हमारी कॉपी ना कोई कर ले। दीन के कभी कॉपीराइट्स नहीं होते, लेकिन अगर आपका ये मकसद हो कि इस नाम को और इस वेबसाइट को पढ़कर किसी का आगे का रास्ता खुल जाए, तो मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी बात है। ज़रूरत इस बात की कि इस वक्त दीन वाले संजीदगी के साथ वेरी सिंसियरली इस बारे में सोचें, क्योंकि आप देखिए कि इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से हम परेशान दिखते हैं अगर, और लॉकडाउन ने हकीकत में लोगों की ज़िंदगी को मुश्किलों में डाल दिया, तो ज़रा सा इस पे भी तो गौर कीजिए ना कि वो लोग जो जुमे की नमाज़ पढ़ने आते हैं और हम सिर्फ दूसरे किसी एक फ़र्द को या किसी एक गिरोह को ही डिस्कस करते रहें, कहाँ उसकी अल्लाह ताला से मुलाकात होगी। अल्लाह के घर में आया था अल्लाह का कुर्ब लेने के लिए, नमाजों से मोहब्बत लेने के लिए और सो ऑन, लेकिन आप तो उसको किसी ऐसी चीज़ों में डाल चुके हैं कि वो आज के बाद या तो फिर सिर्फ आपके पास आएगा, क्योंकि बाज़ बहसों और बाज़ खुतबों का मौजू ही ये होता है कि सिर्फ हमारे ही पास आइए, और या फिर वो आपके पास कभी भी नहीं आएगा। क्यों? एक जुमला लिख लीजिए जम, जब घर वाला घर ना हो तो उसके घर में दिल नहीं लगता। इसी तरह मस्जिदें जो कि अल्लाह के घर हैं, वहाँ अल्लाह का कुर्ब ना मिले, वहाँ अल्लाह ताला से जोड़ने वाली बातें ना हों बल्कि दिलों को तोड़ने वाली बातें हों, तो वहाँ भी लोगों का दिल नहीं जुड़ता। बाद में सोचिएगा इसको, आज क्यों बज़ाहर हमारी मस्जिदें आबाद लेकिन हकीकत में वीरान दिखती हैं, क्योंकि वहाँ दीन की बातें करने वाले ना इत्तफाकियों का शिकार हो गए। अगर आपके पास हक है ना, देखिए आज ये मौजू ऐसा है कि इसी बारे में मैं खोल दूँ ना, तो आपको अगली बातों को सुनने का इंशाल्लाह शौक भी आएगा, और आप ज़रूर सोचेंगे कि आखिर ये जो कुरान पढ़ाया जा रहा है इससे आखिर में लेना क्या है, हमने किया क्या। अगर आयत की तरतीब देख लीजिए, जो आयत 110 हमारे पीछे है, तरतीब क्या है? कुन तुम खैर उम्मतिन उखरीजत लिन्नास, पहली बात लिख लें कि उम्मत मुस्लिमा दूसरों के लिए भेजी गई। ये लफ्ज़ इतना खूबसूरत है कि मैं मिसाल से ही दे देती हूँ वरना बात समझ नहीं आती। क्या आप देखिए कि सारी ही माएँ अपने बच्चों के लिए जीती हैं, उनके लिए काम करती हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर शौहर का इंतकाल हो जाए फिर क्या होता है? सोचिए ज़रा। लोग उस औरत को आकर कहते हैं, सब्र करो ना, होश करो, अब तुमने इन बच्चों के लिए जीना है। ये जो जुमला है ना, अब तुमने इन बच्चों के लिए जीना है, तो माँ क्या कहती है? अब मैं ही तो इनकी हूँ, बाप तो रहा नहीं है। बस इस मिसाल को अपने दिल पे ले लीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है, कुन तुम खैर उम्मतिन, थे तुम कब? सहाबा कराम से लेके सलफ सालहीन के दौर तक, और उस वक़्त तक जब तक कि तुम इस काम को करते थे, और तारीख गवाह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर 1000 साल तक मुसलमान इस दुनिया के नक्शे पर एक बड़ा अहम नाम थे। सारी तिब मुसलमानों की इजाद शुदा, एलजेब्रा का लफ्ज़ अरबिक लफ्ज़ है, पहला ऑपरेशन मुसलमानों ने किया। अब मैं डिटेल्स नहीं दे सकती, आप बाद में मुस्लिम हीरोज़ के नाम पर कुछ चीज़ें लेना चाहें तो आपको दे देंगे। मुसलमान दीन में भी आगे थे, दुनिया में भी आगे थे, और आज इस वक्त रिवाइवल ऑफ दी फेथ है, दोबारा यही हो रहा है। अब हमारे यंगस्टर्स, दुनिया के पढ़े लिखे, हमारे डॉक्टर बनते हुए बच्चे, हमारे इंजीनियर बने हुए बच्चे, हमारे पायलट, और हमारे वो बच्चे कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाकर पढ़ा, उनको दीन की ज़रूरत महसूस हो रही है। क्योंकि देखिए, जब बहुत अरसा कोई आपको बुरा भला कहता है ना, तो एक दिन तो फिर आप परेशान होते हैं। हमारी यूथ ने इस वक्त ये बात समझ ली है कि लोग हमें बुरा क्यों कहते हैं, लोग हमें फलां फलां टाइटल क्यों देते हैं, और हम दुनिया में एक अच्छा नाम क्यों नहीं, कि सारे मुल्कों के साथ और जाब्ते और मुस्लिम मुल्कों के साथ और जाब्ते क्यों हैं, तो फिर उनके अंदर एक एग्रेशन आता है। अब जब हमारी यूथ अल्लाह की तौफीक और उसकी रहमत से दीन की तरफ आई और आ रही है, यह ऐसी कि जैसे बहुत सोने के बाद भी फिर बिस्तर चुभता है। उठते ही सबसे पहले इंसान अपने ग्लासेस ढूंढता है, जूता निकालता है। इसी तरह ये उम्मत 400 साल से सो रही थी, इस्तियारतन बोल रही हूँ, 400 साल से जायद कुछ अरसा हो गया है ये उम्मत सो रही है, क्योंकि कुन तुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास का टाइटल तो पा लिया, काम नहीं किया। अब हमारी यूथ कहती है, हम खड़े होते हैं, आओ जरा कोई करे हमें बात, हम बात करेंगे। अब करे कोई हमारे नबी के बारे में बात, कोई हमारे नबी का कार्टून बनाए या उसको बुरा भला के, हम बात करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काम क्या किया, सबसे पहली बात आप देखिए कि वो चीज़ जो आपने आयत नंबर 104 में देखी थी, और उसमें अल्लाह ताला ने वा तसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीयन, इसको पकड़ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 20 साल से वेस्ट और अमेरिका कनाडा के इर्द गिर्द ज़िंदगी ज़्यादा गुजरी है अपने मुस्लिम मुल्कों की निस्बत। ये भी अल्लाह ही ताला का कोई प्लान था, ना सोचा ना समझा, लेकिन अल्लाह ताला जो करना चाहते हैं। मुझे खुद एक ज़िंदगी अपने मुल्कों में गुजारने के बाद जब इन मुल्कों में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैं देखती थी कि लोग क्यों ऐसा बुरा भला कहते हैं इन मुल्कों को। यहाँ तो बहुत खूबसूरती है, मस्जिदें जितनी खूबसूरत वहाँ, मैं कम से कम इतनी खूबसूरत अपने मुल्क में नहीं देख चुकी थी। इल्ला माशाल्लाह कोई बादशाही मस्जिद है या फैसल मस्जिद है। जिस जौक और शौक से फैमिलीज मगरिब और ईशा की नमाज मस्जिदों में जाकर पढ़ते, फिर वहाँ फैमिली रूम्स हैं, बच्चों के खूबसूरत प्लेइंग रूम्स हैं, बाहर खुले खुले बाग हैं, या कह लीजिए कि पार्किंग्स हैं या बैठने की जगह है, वहाँ हर एक अपने खाने लेकर आता है। बहुत ही अंदर की बात बताऊँ, मेरे अपने दिल में मस्जिद और इमाम और दीन की तरफ भागने वाले बच्चे यंगस्टर्स का असल मुकाम इन मुल्कों में जाकर बना। मिसाल दे देती हूँ, शायद कोई गलत ही ना समझ जाए। आप देखिए कि आप किसी को अगर किसी की बच्ची का रिश्ता आता है और आप कहते हैं, आपको पता है बच्चा मस्जिद में ही रहता है, उसका बड़ा दिल लगता है, वो तो अजान देने जाता है, या चलिए मस्जिद का इमाम है। सच बताइए, दिल पे हाथ रख के एक माँ और एक बाप होने के नाते, ये कोई टैलेंट है? ये तो शायद किसी को पुट ऑफ ही कर दे, लो जी वो तो मस्जिद में बैठा है तो मेरी बेटी को क्या खिलाएगा, सो ऑन। यकीन कीजिए इन मुल्कों में जो हमारी यूथ है, उन बच्चों की बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन क्या है कि इस बच्चे का दिल मस्जिद में लगा हुआ है। मैंने खुद ऐसे जवान बच्चे देखे वहाँ, ख़ासतौर पर ह्यूस्टन से चूँकि ताल्लुक़ था, तो वो कहने को वैसे भी एक बहुत एक्टिवली मुसलमानों का पार्टिसिपेशन वहाँ दिखता था। मेरे सारे कॉन्सेप्ट ही बदल गए, फिर मुझे समझ आया कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है। हमारी यूथ ने अब इस कुरान को पकड़ लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए अल्लाह तेरा लाख शुक्र है। और यही हवाएं अब दूसरी तरफ हैं। किसी ने कहा, मैं तो कुछ नहीं कहती अपनी तरफ, कि जैसे क़यामत से पहले सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकलेगा, इस्लाम का सूरज भी अब मगरिब से ही निकलेगा। वजह क्या है? मैं जो बात कहना चाह रही हूँ वो अब इसके बाद है, इस पे गौर कीजिए कि वा तसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया। उन्होंने अल्लाह की रस्सी पकड़ी। आप आज भी कुछ रिवर्ड्स या कुछ इंग्लिश स्पीकर्स के नाम मुझसे भी ले लीजिएगा बाद में, बेशक खुद भी देखते होंगे उनकी दावत में, उनके कुरान के पढ़ाने, उनके लेक्चर्स के स्टाइल में, कौल अल्लाह कौल रसूल, कुरान की आयत हदीस की आयत। हम तो इतने सबके लाके बांधे बाज़ औक़ात के बात ही ना समझ आए। तो बात समझ गए कि पहला काम जो इस वक्त करने का है कि हम लोगों को इस किताब से जोड़ें। थोड़ी सी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, मैं मानती हूँ। देखिए होगा क्या कि कुछ लोगों को अपने नामों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुछ को अपनी लीडरशिप की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मसलन ये कि अगर 10 ग्रुप बनाए आपने तो 10 ग्रुप लीडर थे। आप कहते हैं ये छोटे छोटे ग्रुप्स को क्या करना है, इनके 3 बना देते हैं या 4, या चलिए 5 ग्रुप बना देते हैं 10 के। क्या होगा? नंबर एक, 5 ग्रुप लीडर्स आउट ऑफ द क्वेश्चन हो जाएंगे। अब वो 5 जब आउट ऑफ द क्वेश्चन हुए तो उनको इन 5 ग्रुप्स में आना पड़ेगा ना, एज अ स्टूडेंट या एज अ हेल्पर। ये नहीं करना चाहते हम, लीडरशिप छोड़ना कोई नहीं चाहता, और इल्ला माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंसान का अपना सोर्स ऑफ नॉलेज होता है ना, उसी चीज़ पर एक लेके चलता है। आज हमें ये जिम्मेदारी निभानी है। और यकीन कीजिए मैं ये जुमले ना भी बोलूँ तो मैं आगे जा सकती हूँ, दौरे कुरान में इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं कभी खुद को भी माफ़ नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी हैं जो सिर्फ साल में एक बार दौरे कुरान ही सुनते हैं। मसरूफियत है, ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात हैं, तो वो बेचारे क्या महरूम रह जाए इन बातों से? तो आज हम दीन की बात करने वालों का ये फ़र्ज़ है कि हम लोगों को इस किताब की दावत दें। देखिए हर किताब इसी किताब से निकलती है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा गुमान है। हर फिक की बात, हर अमली मसाइल फजाइल की बात सुन्नत से ही आते हैं, कुरान और हदीस से सब लेते हैं। तो आप थोड़ी देर के लिए ज़रा सा उसको पीछे करें ना, डायरेक्ट रिसोर्स पे ले आए, असल सोर्स सामने आ जाए तो फिर खतरा नहीं रहता। आप दूध अपने गली के ग्वाले से भी लेते हैं, अच्छा ही होगा, लेकिन हो सकता है उसने इरादतन ना भी किया हो, लेकिन ग्वाले से उस तक दूध आने में बीच में कोई गड़बड़ हो जाए, कोई मक्खी गिर जाए, कोई बाल गिर जाए, कोई पानी डाल दे, तो फिर बात वाजे है। अगर रियल सोर्स पे जुड़ गए तो बात सामने आएगी, और जब अल्लाह की इस रस्सी को पकड़ेंगे और सारे मिलकर पकड़ेंगे ना, तो उसके बाद याद रखिए दिल भी करीब आएंगे। सगे भाई बहनों से कुछ दिन ना मिले ना, तो दिल दूर होने लगते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर नाराजगी हो तो गिले शिकवे भी आने लगते हैं। हम इस किताब को कितना जानते हैं? देखिए, इस वक्त मैं किसी फिरके मसलक के बारे में नहीं कहना चाह रही, मैं तो आप और अपने आप को जो कुरान पढ़ने बैठे हैं उनको एहसास दिला रही हूँ। क्या लोग कुछ किताबें अलिफ से ये तक पढ़ चुके, कई बार पढ़ चुके, हर दर्स में सुन चुके, और कुरान पूरा ना सुना? चलिए, पंच सूरा कितना मारूफ है हमारे कल्चर में, जिसने भी शुरू में ये टर्म बनाई होगी अच्छी नीयत से बनाई होगी, ये भी बता दूं। पिछले दौर की जो शख्सियात थी, जो आइमे कराम थे, जो मुहद्दिसीन थे, उनके करीब के लोग थे, उन्होंने ये सब किताबें और सारी चीज़ें जो पाइल अप की, ये बहुत अच्छी नीयत से की थी। मसला आज बिगड़ा। वो जब बहुत गहरा इल्म लेते थे, इन डेप्थ नॉलेज कुरान का, हदीस का, और उन्होंने जिंदगियां लगाई। इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्ला को पढ़ लीजिए, इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्ला के बारे में पढ़िए, हाफिज़ इब्ने हजर अल अस्कलानी के बारे में पढ़िए, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्ला के बारे में पढ़िए, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला इन सब पे अपनी रहमतें करे, इनके बारे में पढ़िए। इनका तो पूरा फुल टाइम दीन का काम था। अब उन्होंने सोचा कि ये काम हमने तो किया, लेकिन अवामुन्नास, बिल्कुल मुझे इस वक्त अपनी कैफियत लग रही है कि मेरा दिल कर रहा है इस दौरे कुरान में अपने उन साथियों को हर वो चीज़ दे दूं, कम अज़ कम थोड़ी थोड़ी, कि जो बात में नहीं आ पाते, वक्त लगाने नहीं मुश्किल है। उन्होंने ये किताबें बनाई, लिखी, या किसी भी फॉर्म में लोगों की सहूलत के लिए, कि फुल टर्म पढ़ने के बाद ये खुलासा है हमने क्या किया। आज उम्मत मुस्लिमा में जो ड्रॉबैक आ गया वो क्या, कि हमने असल छोड़ दी। कुरान पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ये तो पढ़ा ही नहीं जा सकता, और ये तो आम लोगों की किताब नहीं, ये तो उलमाए कराम की किताब है, और ये तो बड़ी गहरी बात है। और फिर बाद में होता क्या पता, ये पाबंदियाँ लग जाती, ना ना ये सिर्फ उलमा की किताब है। याद रखिए, बनी इसराइल जिनकी कहानियाँ पढ़ते आ रहे, उनका सबसे बड़ा जुर्म क्या था, कि उन्होंने तौरात को छुपा दिया। सिर्फ कहते हैं, एक दौर ऐसा भी गुजरा इनकी हिस्ट्री में कि सिर्फ एक ही नुस्खा होता था पूरे मुल्क में, और वो बादशाह के तख्त के पीछे एक चर्च नुमा कमरा था, उसमें होता था, लॉक्ड रूम होता था, चाबी उसकी पादरी के पास होती थी। जब कभी कोई बादशाह के पास मसला आता, कोई पूछता, कोई मसला, कोई इशू, जिसको कहे कानून साजी, बादशाह उस प्रीस से मशवरा करता, वो कहता मैं पढ़ के आता हूं अंदर क्या चीज है, और वो लॉक खोल कर क्या करता होगा, ये सिर्फ बात समझाने की है। वो अंदर से जो बात पढ़ के बताना चाहे बता दे। बाद लोगों को भी ये बात पता थी कि अप्रोच सिर्फ इधर इन इन की औरों की नहीं है, बस वो फिर उनके हाथ गर्म करें, वो उनकी मर्जी के फतवे लें, वो उनको जो भी करें, पीछे आप पढ़ चुके हैं। वो जो बादशाह को बताते, बादशाह वो बताने पे मजबूर था। तो हुक्मरानों का भी ये फर्ज है कि आज हुक्मरान रियाया को सही तौर पे इस दीन की तरफ लें, और यकीन कीजिए इसके लिए इनफरादी और इज्तमाही कोशिशों की जरूरत है, वरना हम नहीं बचेंगे। किसी भी मुल्क का डिक्लाइन देख लीजिए, स्पेन की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, वहां मुसलमान थे और गिरे क्या। मैं पूरी बुक पढ़ी, जब मुझे अल्लाह ने मौका दिया जाने का, तो मैंने अपने सफर के दौरान बुक पूरी साथ में वही रखी थी कि आखिर ये चेंज कैसे आया, फिरका वारियत थी। इस वक्त वक्त नहीं है ना, जरूरत है, आपको मैं दावत दूंगी कि आप कोई छोटा सा बुकलेट जरूर पढ़िएगा इस बारे में, कि आखिर वहां मुसलमानों की इतनी बड़ी हुकूमत, उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, आपस में फिरके शुरू हो गए, जमातें गिरो। और याद रखिए, जब जमातें और गिरोह बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर बाज़ औकात करने और कहने वालों को भी नहीं पता चलता कि हम किसकी तरफ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो सारी बात का खुलासा ये है कि आयत नंबर अगर आप 96 से ऑनवर्ड, बल्कि पारे के शुरू से ही देखें, तो दो मजमून साथ साथ चल रहे हैं, उम्मत वसत, उम्मत की बातें, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमिया, और दूसरी तरफ कुफार से ताल्लुकात की हदबंदियां। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मामलात करने से नहीं रोकता, लेकिन आप देखिए कि आयत नंबर 96 से अगर आप देखें ऊपर, अगर आप बस सुनते जाएं, मैं आपको शुरू से अंत तक इधर लाना चाह रही हूँ। हमने पारा खोला तो लन तनालुल बिरा की बातें कर दी गई, कि तुम उम्मत वसत का किरदार अदा नहीं कर सकते जब तक अपनी मनपसंद चीज़ें अल्लाह के रास्ते में ना दो, और वो तुम्हारे माल से लेकर तुम्हारी स्किल्स और तुम्हारे वक्त तक है। तुम्हें लाइफस्टाइल देना पड़ेगा, तुम्हें अन्ना बड़ी पसंद है तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, और तुम्हें वक्त पसंद है तुम्हें नींद पसंद है तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, और तुम्हें अल्लाह को बताना पड़ेगा कि तुम्हें अल्लाह ताला की हस्ती तुम्हारे लिए सबसे बड़ा बड़ी है। आगे देखिए 93 से आगे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल देकर फिर बनी इसराइल को अलर्ट दिया गया कि उन्होंने जो किया उसकी सोच और थी, तुम बाद में किसी और चीज़ में पड़ गए। उसके बाद खाना काबा की बातें आती हैं कि अल्लाह ताला ने इन अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नास इल्लज़ी बिबक्का मुबारकम व हुदल लिल आलमीन और फीही आयातुम बय्यिनातुन मकामु इब्राहिम। यहाँ रुक जाइए तो अगर आप देखेंगे बरकत वाला है, हिदायत है उसमें, रोशन निशानियां हैं और मकाम इब्राहिम है। वमन दखलहू काना अमीना, जो इसमें दाखिल हो गया बस अमन वाला हो गया, यानी अल्लाह ने टेंशन फ्री जोन का तारुफ करा दिया। असल में जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मांगी हुई दुआ थी कि रब्बी जअल हाज़ा बलदन आमिनन, इसकी पूरी इस दुआ का पूरा होना है। वहां अकेले बच्चे भी रातों को उठ के इधर से उधर जाते रहे, कुछ भी नहीं होता। फिर आगे आप देखिए कि 99-98 में कुफार से ताल्लुक की चंद बातें थी। देखिए दुश्मन से मुख्तात तो रहना ही पड़ता है ना, ये तो बेवकूफ़ी होगी ना कि आप पूरा ट्रस्ट उन पर ही करते हैं कि जो बात में आपको नुकसान दें। तो इस पे अल्लाह ताला ने हदबंदी दी कि हुस्ने मामला कर सकते हो लेकिन नहीं जो करना वो क्या है, जिस चीज़ से तुमने अपने आप को भी बचा के रखना है वो क्या है कि उनकी इताअत नहीं करनी। आयत 100 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़ मिनल्लज़ीना उतुल किताब यरुद्दूकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन। उनके प्लान्स ये हैं कि वो तुम्हें मुसलमान नहीं छोड़ना चाहते और अपने दीन में भी नहीं लेना चाहते, ये भी याद रखिए। वो चाहते हैं कोई नई पर्सनैलिटी बन जाए, तो मुसलमानों तुम्हें ज़रा सी फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह ने रोका है तो उनकी इताअत करने से रोका है, अल्लाह ने रोका है तो उनको रोल मॉडल बनाने से रोका है, अल्लाह ताला ने रोका है तो ये नहीं कहा कि तुम उन जैसा लाइफस्टाइल बनाओ। असल बात यह है कि आज हमारी नस्लें बहुत ज़्यादा मुतासर हैं वेस्टर्न कल्चर से, क्योंकि खाने पीने की चेन से लेकर कपड़ों के ब्रांड्स तक बाहर से आते हैं, उसकी वजह से मरूबियत आ गई। हम इंशाल्लाह छठे पारे में इस पे बात करेंगे आगे जाके कि आज की नस्लों में क्यों बिगाड़ आने लग गया एक खास हद तक, और नेट ने और सोशल मीडिया ने सारे फासले ही ख़त्म कर दिए। तो आपने मैंने करना क्या है कि मरूबियत को ख़त्म करना है। आप देखिए कि जब ये इताअत आगे बढ़ते बढ़ते रस्म व रिवाज में ढल जाए, लाइफ स्टाइल में चली जाए, कहने में ये बात बड़ी मामूली लग रही है मुझे भी, लेकिन जहनीत बदलना किसी भी कौम और उसकी नस्ल का ये बहुत बड़ा टारगेट है, और आज यही टारगेट्स हैं। इलाज क्या, डरो नहीं, वत्तकुल्ला, अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक्कुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून। करो क्या, 24 घंटे के मुस्लिम बनो, 24/7 मुस्लिम बनो, पार्ट टाइम मुस्लिम नहीं बनना। कोशिश तो करो, अभी चल पड़े हो तो चलते तो जाओ, चल रहे थे तो भागो, भाग रहे थे तो हम्पो। हर दिन तुम्हारा तकवा बढ़े, तुम अल्लाह की तरफ कुर्बत लेते जाओ, और फिर एक वक्त आएगा कि तुम पूरी जिंदगी के मुस्लिम होगे। कब, जब अपनी जिंदगी के हर अमल को इबादत बना लेंगे। एक औरत खाना भी पकाएगी तो इबादत समझ के दिल की खुशी से पकाएगी, और इसी तरह घर की सफाई सुथराई भी। मर्द कमाएंगे, हर रिज़्क़ के हलाल लाएंगे तो इबादत समझ के करेंगे, और हर मौके पे दुआएं मांग ले। जुमला एक नोट कर लीजिए कि इंसान हक का तुकाती कब करता है, यानी वला तमूतुन्ना इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून, ये कैफियत कब आती है। नंबर एक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआओं की वजह से, और दूसरी बात है सुन्नतों पे अमल करके। फिर आपकी पूरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। करो क्या, बात असीमु भी हबलिल्लाह, चिमट जाओ, छुक जाओ। जमीन के लफ्ज़ में पूरे कुरान पे अमल करने की भी दावत है, और सबके मिलकर करने की भी है। हमने इसको किसी और ही नाम से जमा कर लिया। जब करीब आएंगे तो फिरकों के इख्तलाफात का अंदेशा हो सकता है, तो साथ ही गाइडलाइन देकर बता दिया कि तुम अपनी अपनी जगह पे दीन को प्रमोट करो, एक गिरोह में आ जाओ जिससे भी तुम्हारा जहन मुत्तफिक है, जिससे तुम्हारी कोई एसोसिएशन है, जिससे तुम्हें कुछ मिला। अब बैठकर एक बंदा अपने आप को पूछे मैं क्या कर सकती हूँ वो लिख लीजिए। दूसरा, 10 लोग मिलकर अपनी स्किल्स का एक चार्ट बनाएं और एक शख्स को लीडर बनाएं जो पहले से भी मौजूद होगा, तो बस उसे कह के हमें काम दीजिए, अब हमें रास्ता मिल गया, नो मोर। और इसी तरह चलते जाइए चलते जाइए, अल्लाह ताला की हुक्म से दुनिया से अंधेरे दूर हो जाएंगे, लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे। करीब आने से फ़ायदा क्या होता है कि एक दूसरे के मसाइल समझ आते हैं, उसमें अपने मसाइल का हल होता है, दूसरों की कुर्बानियां जो वो दीन के लिए कर रहे हैं वो नजर आती हैं, तो अपनी कुर्बानियां करने को भी दिल करता है और शर्म भी आती है कि हम क्यों ना करें। और एक वक्त आएगा कि आप करीब से करीब होते जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लम की मिसाल इसमें दे दी गई कि वह मक्का वालों को कहा जा रहा है खास तौर पे, वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिन मिनन्नार फअन्कज़कुम मिन्हा, तुम तो आग के घड़े पे थे और मैं आया और तुमको बचाया। अल्लाह के नबी की बहुत प्यारी हदीस है, सिर्फ उसके 2 लफ्ज़ हैं, इसको कोट ना कीजिए, सिर्फ सुन लीजिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम तो आग के घड़े के किनारे पे थे और मैं पीछे से तुमको उठाकर ला रहा था। ये काम आज भी उनका है जो आपकी मेरी जिंदगी में दीन को ले आते हैं, जो आपको मुझे अच्छे अच्छे काम करने की दावत देते हैं। तो फिरका वारियत का हल क्या है कि लोगों को जोड़ दीजिए और अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना कुलूबिना, ये दुआएं मांगते रहिए। अल्लाह के नबी की सिखाई हुई ये दुआ है कि अल्लाह हमारे दिलों में उल्फत डाल दे। लोग तो फिरकों में इतने बटे हुए थे, जंगो जिदाल के आदि थे, 1700 जंगों के रिकॉर्ड मिलते हैं अरब की हिस्ट्री में। जंगे बास गालिबन 120 से 200 साल तक आता है कि जारी रही, करना किसने है सारे नहीं कर सकते, किस हद तक, वल तक मिनकुम उम्मतुन यदउना इलल खैर। ये जो मिनकुम का लफ्ज है ना, इसको हाईलाइट कीजिए। हर बंदा अपने घर में अपनी अपनी जगह पे मुबल्लिग बनेगा, लेकिन कुछ तो बाज़ाब्ता तौर पे काम करेंगे। यानी असल में इनफिरादी और इज्तमाई दोनों कोशिशों की तरफ इशारा है कि पूरी उम्मत में से कुछ लोग तो बाज़ाब्ता ये काम करेंगे, इंस्टीट्यूट तामीर होंगे, इदारे उनसे बनेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे, फिर वहाँ 100-200 लोग काम करेंगे और पूरे मुल्क पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। अल्लाह मुझे आपको इसी का कोई हिस्सा बना दे, यानी जिस तरह आप कहते हैं ना, वन ऑफ दी फ्रैक्शन, पूरे दायरे का एक हिस्सा, आप उस हिस्से के अंदर सिमट जाइए, बाकी काम दूसरे करेंगे। और इस तरह से होगा क्या कि आप बेहतरीन तरीके से पहुंचेंगे उस जगह पे जहां आज पहुंचाना है। आज की जरूरत क्या है, इस नाते से ये भी सवाल कीजिए खुद से, और मैं भी पूछती हूँ हम क्या करें। नेक्स्ट पे जो चलिए देखिए, क्या हम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते हैं? अपना जायजा लीजिए, थोड़ा सा पीछे लिया था आज भी दोहरा लीजिए। तो लेते तो हैं, लेकिन क्या वाकई हकीकत में उसको हम ले पाते हैं, इस पे जायजा लीजिए। आप देखिए कि आज की जरूरत सबसे बड़ी क्या है कि पढ़ा लिखा मुसलमान दीन के नाम पे मारूफ हो। जब पढ़े लिखे लोग नेकियां करते हैं और दावत देते हैं नेकियां करने की, तो लोगों को नेकियां भी रिस्पेक्टफुल लगती हैं। मारूफ लोग, मशहूर लोग, इन लीड्स, फेम, कोई गुलकार है तो कोई अदाकार है तो कोई क्रिकेटर है, अगर वो दीन की बात लेके आएगा ना, तो लोग उसको ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि दिल जुड़े होते हैं ना। बात की मोहब्बत से पहले बात कहने वाले की मोहब्बत आ जाती है, तो लिहाजा ऐसे लोगों को आगे लाकर रिवायती रटे रटाए दीन के तरीके और वही मारूफ तरीके के हम मिंबरों पे आकर भूल ही जाते हैं कि आम जिंदगी में तो कोई ये टोन नहीं इस्तेमाल करता जो हम यहाँ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि अल्लाह ताला फरमाते उलाइक हुमुल मुफ्लिहून, ये हैं फलाह वाले लोग, कामयाब ही हैं। और कामयाबी को निकालने के लिए चीर फाड़ करनी पड़ती है। किसान को फलाह कहते हैं क्योंकि वो जमीन को चीर फाड़ करता है, फिर अंदर की खैर को बाहर लाता है। तो क्या पैगाम है आपके मेरे लिए कि इस काम को करने वालों को मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। और याद रखिए, हमारा दीन एफर्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट्स ओरिएंटेड नहीं है। हजरत नूह अलैहि सलाम 950 साल कोशिशें करते रहे, नतायज बहुत वाजे ना हो सके, तो क्या उनकी कोशिशें जाया नहीं? इसी तरह आज आप और मैं और हमारे ही दौर के बहुत खूबसूरत दीनदार जो और नामों और प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं कुरान सुन्नत के लिए, हम सब एक ही हैं। अगर हम एफर्ट्स कर रहे हैं और अगर नतीजा ये 2020 से लेकर ये पूरी 2000 की सदी में भी ना निकला, तो हम जाया नहीं होंगे। हमारा नाम अल्लाह के यहाँ लिखा जाएगा बिल्कुल उन्हीं की तरह जिन जो मक्का में शहीद कर दिए गए, हजरत सुमैया, उनके शौहर हजरत यासिर, और फिर इसी तरह हजरत मुसब बिन उबैर ने क्या बहारें देखी इस्लाम की, गजवे उहद में चले गए, और इसी तरह के वो लोग। तो उन्होंने ये सब नहीं देखा, लेकिन उनका नाम है। वो कहते हैं ना कि जब चमन में बहार होगी तो हमारा भी होन होगा उसमें। हमें नाम नहीं चाहिए, हमें अब काम चाहिए। हर काम करते वक्त ये कह लीजिए कि अल्लाह मुझे ज़ाया ना करना, और मुझसे ये काम इस तरह से ये काम ले कि जिस तरह इसको करने का हक है। और इंशाल्लाह जब आप पूरे आदाब के साथ पूरे तरीकों से करेंगे इस सारे काम को करने में, अल्लाह ताला ने आपको जो तरीका सिखाया है, तो उसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत खैर आएगी। तरीके हम देख ही चुके, सुन्नतें भी हों, दिल में दर्द भी हो, बगैर दर्द के दीन का काम करना ऐसे ही है कि सिर्फ पैसों के लिए कोई डॉक्टर बन जाए। मरीज का दर्द ना हो तो डॉक्टर हो सकता है वो दवाइयाँ भी दे दे लिखकर जिसकी ज़रूरत नहीं होती, पर मजबूरी क्या है कि वो उसकी दुकान पे मौजूद है। ये दीन ना हो हमारा आपका, जो चीज़ मेरे पास है ये दे दो, बस मैंने इनको देनी है ना, है ये तो देना ही है। तो इंशाल्लाह ताला जब इस तरह की सोच होगी तो हमारी फिक्र बदलेगी, और फिक्र करने वाले लोग चाहिए। आज आपको मुझे अल्लाह सुबहाना ताला ने जो वक्त दिया, जो मौका दिया, जो खूबसूरती इस वक्त मेरे आपके पास है इस दीन की, क्या हकीकत में आप और मैं इन सारी चीज़ों पर हैं, बस इसके ऊपर गौर व फिक्र करते रहेंगे। अल्लाह ताला ने आपसे मुझसे जो काम लेना है वो चलना है, और जितना ज़्यादा इस चीज़ में अपने आप को छोटा बनाएंगे अल्लाह ताला आपको उतना बड़ा बनाएगा। लो प्रोफाइल पे काम करने की ज़रूरत है आज दीन को, दीन वालों के लंबे लंबे साहब के लाख के और किबला और काबा और कुछ इस तरह के लकब वो लोगों के जहनों में वैसे ही कुछ ना कुछ और हवा भर देते हैं। जिस चीज़ से बचना है इस रास्ते में वो क्या है, वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रक़ू वाख्तलफू, ये दो जरासीम हैं, ये वायरसेस हैं, इनको लिख लें, तफर्का और इख्तलाफ। देखिए इख्तलाफ शर्त है, इख्तलाफ हकीकत है, मुखालफत बर्दाश्त नहीं है, और जब आपस में कुव्वते बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है ना तो इख्तलाफ फिर मुखालफत में बदलता है। एक मिसाल दे के इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं, और वो क्या है कि आप रोड पे जाएं, कुछ गाड़ियां इधर से आ रही हैं, कुछ दूसरी तरफ से आ रही हैं, आप अपनी लेन पर रहिए, वो अपनी लेन पर रहें, अपने सामने वाले से अपना डिस्टेंस ज़रा सा ठीक रखिए, बस उसके बाद ख़त्म। आप भी जाएं वो भी जाएं, क्या आप में से मेरे में से कोई ये कहता है कि मैं सिर्फ उस दिन गाड़ी चलाऊंगा जिस दिन रोड पे कोई और ना हो? तो आजकल शौक पूरा कर लीजिए, लॉकडाउन ने इसको भी आसान कर दिया, क्या मजा आता है उस वक्त, या तो ये हड़ताल का दिन होगा या कर्फ्यू होगा या लॉकडाउन होगा। हम इस दुनिया के बाजार में जाएंगे, चंद जुमले दिल से बोलती हूँ, लिख लीजिए आप कलम से ही चाहे या जैसे लिख सके, इस दुनिया में इख्तलाफात रहेंगे, लोग फर्क है। हम सूरह बनी इसराइल में पढ़ेंगे, कुल्लू यामलू अला शाकिला, अल्लाह ने हर एक की शाकिल अलग बनाई, जैसे शक्लें अलग हैं वैसे शाकिल अलग है, वो क्या होती है उसको वहां जाकर इंशाल्लाह देखेंगे। सब रहेंगे, हर नाम अपने साथ रखे कि सहाबा से लेकर आज तक उम्मत में हर तरह की सोच के लोग रहे, लेकिन मुखालफत नहीं थी। गड़बड़ कहां से होती है, जहां मुखालफत होती है। तो ये इख्तलाफ और ये नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान एक दूसरे को ही काफिर और मुनाफिक होने के फतवे देने लग जाएं। और याद रखिए अल्लाह के नबी ने ये उम्मत बड़ी मोहब्बत से बनाई थी, जैसे एक माली एक एक पौधा लगाता है फिर एक एक फूल बनाता है, पहले वो एक फूल होता है लेकिन बहुत सारे फूलों के मजमुए को क्यारी कहते हैं। कोई माली अगर एक फूल लगाए और दूसरा आने पे पहला उतार दे तो क्या होगा? हम भी बाज़ दफ़ा अपनी नेकियों के साथ यही करते हैं। तो नेकियों की क्यारियां बनाने के लिए आपको नेकियां करते ही रहना होगा। कितना दर्द था अल्लाह के नबी को बदर के दिन कि अल्लाह ये उम्मत चली ना जाए, और कितने हुफ्फाज़ का खून बहा, सहाबा ने कितनी तकलीफें सही, बिलाल को कितने कोड़े पड़े, फिर कहीं जाकर हम कलमा पढ़ने के काबिल हुए, वरना तो हमें भी नहीं था किसी ने मुसलमान होने देना। फिर एक जम ले लीजिए कि आज हमें इस दीन पे अमल करने पे बातें सुननी पड़ती हैं और हम नहीं सुनते। सहाबा का तो कलमा पढ़ने पे बातें नहीं, ताने सुनने पर ताने मिलते थे और कोड़े पड़ते थे। कितनी मेहनत की गई इस पैगाम को आगे पहुंचाने में, क्या आज मनो अन एस इट इज हम तक पहुंचा ये कुरान और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, फिर कहीं आज आप और मैं बैठे हैं इसको पढ़ने के लिए। ये दौरे कुरान मैं और आप कितने आराम से कर रहे हैं, और कैसे ये आयतें जमा हुई कैसे हुई, तो क्या हम इसकी धज्जियां बिखार देंगे? करना क्या, क्या आज दीन वाले दिल जोड़ दें? जब दीन वालों के दिल जुड़ जाएंगे वो मोहब्बत भरी बातें करेंगे, अपने इख्तलाफी मसाइल को कमरों में बैठकर हल करें, सेमिनार्स करें, बिस्मिल्ला बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। मुसलमान अपने लिए जो पसंद करते हैं वो दूसरे के लिए भी। फिराना को छोड़कर और तासुब को छोड़कर और बचपन से जो सुना ये करते आए ये छोड़कर बैठेंगे, देखिएगा एंड पे एक ही बात आएगी, वहदते उम्मत का राज, वा तसीमो बिहब्लिल्लाही जमिया। बस उसके बाद फिर खैर, आप देखिए कि अल्लाह के नबी को क्या गुण आता था दिलों को जोड़ने का। हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह सूरह अनफाल और तौबा में भी ये बात आएगी। सोहेब रूमी रोम से आए, बिलाल खबशा से आए, सलमान सलमान फारस से आए, कैसे सबके दिल जुड़ गए। हबशी शख्स अजान देता है और सारे गोरे और सुर्ख रंगों वाले उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि दिल मिले हुए थे, इसलिए कि उनके गिरोही नाम नहीं थे। अगर इनका कोई नाम है तो हम भी रखने को तैयार हैं, तो वरना याद रखिए कि हम पीछे रह जाएंगे। सारी बात का एंड अप, जिसके बाद हम आगे शुरू करेंगे अगले मजमून पे। और वो हदीस तो हमने पीछे पढ़ ही ली थी कि आदमी की बीवी में, माल में, इसकी जान में, इसकी औलाद में और इसके हमसाए में फितना है, जिसे नमाज, रोज़ा, सदका और अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर से मिटाना होगा। यानी आपका मेरा इस वक्त अगर दीन का काम करने का और अल्लाह की बात अल्लाह के लिए अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने वालों में हमारे नाम लिखे गए, तो ये हमारे ऊपर और हमारे बच्चों में, हमारे माल में आने वाले बहुत सारे फितनों को अल्लाह ताला की रहमत से हटा देगा। और अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। खुले दिल से ये काम कीजिए, तासुब छोड़कर वुसत कल्बी की बात लीजिए। तो हमें करना क्या है कि लोगों की बुराइयों को हाईलाइट कैसे करना है कि वो अग्रेसिव ना हो, और एक जेम ले लीजिए कि लोगों की अना को बेदार करने से पहले उनके जमीर को बेदार कीजिए। अना सोया बस शेर है, सोए ही रहने दीजिए इसको। जब हम उस शेर को उभारते ना इधर और स्टाइल और बाजू चढ़ा रहे हैं और चैलेंजेस और हम आपको मोबाइल की दावतें देते हैं, ये तो काम नहीं होता। अल्लाह ताला आपको मुझे बेहतरीन कह रहा है। दुआ कीजिए क़यामत के दिन भी हम बेहतरीन हो, नबी ही के हाथों से हौज़े कौसर का पानी पिए, कहीं ऐन वक्त पे फरिश्ते हमें हटा ना दें। अल्लाह ने मुझे आपको बेहतरीन जिस बात के लिए कहा है वो या मुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर है, तो हम इसी को करें ना। हमारी शक्लों की वजह से, ना हमारे बड़े घरों की वजह से हम बेहतरीन हैं। और अल्लाह का गुस्सा भी है कि कुरान पढ़कर भी ये काम ना करोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, फिर बेसकूनी होगी, फिर तुम्हें पिल्स खानी पड़ेंगी, फिर तुम्हें नींद वाली गोलियां खानी पड़ेंगी, फिर तुम्हें टेंशन रिलीफ करने के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, घंटों से दुख सुख करना पड़ेगा। तो अल्लाह की नाराजगी से बचने के लिए ये काम कीजिए। हमारी भी दो आंखें हैं, दूसरों की भी दो आंखें हैं, हमारा भी एक ही दिमाग है, उनका भी है। सिर्फ तामरून बिल मारूफ वतनहउन अनिल मुनकर कर लीजिए तो हक अदा होगा। और एक बात कि मुझे आपको क्लीनिंग का काम दिया जा रहा है, ग्लोबल क्लीनिंग, जहनी सफाई, लोगों की सोच को बदलने का काम उम्मत मुस्लिमा करेंगे, क्योंकि उखरीजत लिन्नास, पब्लिक सर्विस ऑफर हो रही है। अल्टीमेट ह्यूमैनिटेरियन कॉज है ये है असल में हकूकुल इबाद पूरे करने वाली बातें। हमारा काम तो सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो सोशल वर्क के पे काम कर रही हैं और ह्यूमन राइट्स पे काम कर रही हैं उससे बड़ा है। और वो क्या है कि लोगों को जहन्नुम में गिरने से बचा लीजिए। और ये काम आसान कब हो जाता है, जब तू मेनू न बिल्ला होता, अल्लाह से अजर के वादे। लिल्ला ही, देखिए तीन लफ्ज लिख लीजिए, चले दो ही लिख लीजिए, लिल्ला ही फिल्ला ही, तीसरा लिखना चाहें तो बिल्ला ही। ये काम करना अल्लाह के लिए, अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके पे करना है। इस रास्ते में जो मुश्किल आए इस पर अल्लाह पर नजरें लगानी है कि वही अजर देगा, वही मुश्किलें निकालेगा। और अपनी नस्लों को अपने अमली नमूने बनाकर दिखाने हैं कुरान और सुन्नत से जोड़ने के। अब चलते हैं आयत नंबर 111 पे। आप लोग मुसहफ से देख रहे हैं तो खोल लीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, लन यदुर्रूकुम इल्ला अज़न व इन युकातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार थुम्मा ला युनसरून। यानी जब मुसलमान ये काम ढंग से करने लग जाएंगे तो फिर गैरों के प्रोपेगंडे और गैरों की बातें नुकसान नहीं देंगी। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई नुकसान दे सकेगा तो वो क्या देगा, ये तुम्हें सताने के सिवा और ज्यादा कुछ जरर नहीं पहुंचा सकते। अगर लड़ाई का मौका आ जाए तो पीठ मोड़ लेंगे, फिर मदद ना किए जाएंगे। इनको हर जगह जिल्लत की मार पड़ी, इल्ला ये कि अल्लाह ताला की या लोगों की पनाह में हों। ये गज़बे इलाही के मुस्तहिक हो गए और इन पर फकीरी डाल दी गई। ये इसलिए कि ये लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफर करते हैं, ये अल्लाह ताला की आयतों से कुफर करते थे और बेवजह अम्बिया कराम को कत्ल करते थे। ये बदला है इनकी नाफरमानी और ज्यादतियों का। लेकिन इन बातों को सुनकर एकदम खून खौलने की बजाय ये भी तो सुन लीजिए कि ये सारे के सारे यकसा नहीं, बल्कि इन अहले किताब में एक जमात हक पर कायम रहने वाली भी है, जो रातों के वक्त भी कलामुल्लाह की तिलावत करते हैं और सजदे भी करते हैं। ये अल्लाह ताला पर और क्यामत के दिन पर ईमान भी रखते हैं, भलाइयों का हुक्म करते हैं और बुराइयों से रोकते हैं और भलाई के कामों में जल्दी करते हैं। ये नेक बख्त लोगों में से हैं। ये जो कुछ भी भलाइयां करें, इनकी नाकदरी न की जाएगी। अल्लाह ताला परहेजकारों को खूब जानता है। काफिरों को इनके माल और इनकी औलाद अल्लाह के यहाँ कुछ काम न आएंगी। ये जहन्नमी हैं जो हमेशा इसमें पड़े रहेंगे। ये कुफार जो खर्च करें, इसकी मिसाल ये है कि एक तुन हवा चली जिसमें पाला था यानी ठंडक, जो जालिमों की खेती पर पड़ा और इसे तहस नहस कर दिया। अल्लाह ताला ने इन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। ऐ ईमान वालो, तुम अपना दिली दोस्त ईमान वालों के सिवा और किसी को न बनाओ। तुम तो नहीं देखते, यानी तुम्हें नहीं पता चलता, क्योंकि दिलों पे तो अल्लाह की निगाह है। तुम तो नहीं देखते दूसरे लोग तुम्हारी तबाही में कुछ कसर नहीं रखते। वो चाहते हैं कि तुम दुख में पड़ो। इनकी दुश्मनी यानी अदावत तो खुद इनकी जुबान से भी जाहिर हो चुकी, और आज की जुबान मीडिया, जहां से प्रोपेगंडे होते हैं, हर वक्त तो नहीं लेकिन कभी कभी, और जो इनके सीनों में पोशीदा है वो बहुत ज्यादा है। हमने तुम्हारे लिए आयतें बयान कर दी, अगर अकलमंद हो तो गौर करो। देखिए, ये वो आयतें जिसको मैं अक्सर कहती हूँ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। पढ़ने और बताने वाला एक लफ्ज़ न बोले तो ये तर्जमा ही काफ़ी है, और बताया उस हस्ती की तरफ से है जिसने हम सबको पैदा किया, उनको भी बनाया और हमें भी बनाया। क्योंकि हम परेशान हो जाते हैं ना, हमारी नस्लों का क्या होगा, हाय बाहर इतना बोझ है, हाय किधर है। पहले तो अल्लाह का इंसाफ देखिए ना कि अच्छे लोगों का भी जिक्र किया। हमारा किसी से अगर ताल्लुक़ बिगड़ जाए, हम उसकी सारी खूबियाँ भूल जाते हैं। जो पिछली ज़िंदगी में उसने खैर दी ली होती, हम कहते हैं छोड़ो। तलाक इसकी बेहतरीन मिसाल है। शोहर बीवी सब बातें भूल भाल के बस आखिर में एक दूसरे को इल्ज़ाम और बुराइयों के दावे तोहफे देते हैं। अल्लाह ताला ने इस कौम के जितने तस्करे किए, आप देखिए कि उन सब में अच्छे लोगों का भी जिक्र किया। उस दौर में भी थे अब्दुल्ला बिन सलाम जैसे लोग, आज भी हैं, मोहम्मद असद हैं, मरियम जमीला, यूसुफ इस्लाम, कैट स्टीवन जिनको आप कहते हैं, कि ये सब आज ना सिर्फ ये है कि रिवॉर्ड हो चुके बल्कि इस्लाम की दावत भी दे रहे हैं। और आप देखिए कि सूरह फातिहा में हमने मग़दूबुन अलैहिम वलद्दालीन का जो इशारा लिया था ना, यहाँ अल्लाह ताला ने एक बात कह दी कि सारे बुरे नहीं हैं। अगर किसी ख़ास कौम का नाम लिया जाता ना, तो फिर ये खैर और खूबी वाले लोगों का हक मारा जाता। तो ज़रूरत है इस बात की कि तुम इनकी तरफ लगो, इस सोच के साथ अल्लाह की बात को सुनो। कैसे, देखिएगा 119 को, अगर अकलमंद हो तो गौर करो। हाँ, तुम तो इन्हें चाहते हो यानी यू लव देम, और वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते। तुम पूरी किताब को मानते हो, वो नहीं मानते, फिर मोहब्बत कैसी। ये तुम्हारे सामने तो अपने ईमान का इकरार करते हैं, लेकिन तन्हाई में मारे गुस्से के उंगलियां चबाते हैं। कह दो मूतु बिग़ैज़िकुम, अपने गुस्से में ही मर जाओ, अल्लाह ताला दिलों के राज को बखूबी जानता है। तुम्हें अगर कोई भलाई मिले तो ये नाखुश होते हैं, हाँ अगर बुराई पहुंचे तो खुश होते हैं। अब इतना सुनकर तो ब्लड प्रेशर हाई हो ही चुका होगा कुछ लोगों का कि अच्छा, ये अजाइम है इनके हमारे बारे में। गुस्सा, तकलीफ और बोझ और पता नहीं क्या क्या अपने दिल पे लेते हुए जब आप ये चीजें सुनते हैं कि वो ऐसे, और आप देखिए कि खुली खुली बातें हैं ना, इसमें कोई छुपने छुपाने या ना समझ आने वाली बातें तो थी नहीं। अल्लाह ताला ने हकीकत खोल के रख दी कि तुम भाग भाग कर जाते हो, इनके पास ये तो नहीं आते। बहुत होगा तो चंद दिन के लिए, एक टूरिज्म के लिए आ जाएंगे, तुम तो अपना घर माल बेच कर जाने को तैयार हो। तुम तो भागते हो इनकी तरफ, हाँ इनकी रस्में, मौके, इनकी ईदें तुम मनाते हो, ये नहीं मनाते। तुम्हारे साथ रोजे नहीं रखते, तुम्हारे साथ बकरे जिबा नहीं करते, तुम्हारे साथ हज उमरा नहीं करते। बात तो सच है, तुम इनके तौर तरीकों को अपनी जिंदगियों में लाते हो, ये तो नहीं लाते। लेकिन अगर तुम हकीकत में इस चीज के ऊपर अपने दिल को ले आओ कि कुछ लोग जो वाकई हकीकत में इस सारी चीजों में अपने आप को फिट करना चाहते हैं, तो आखिर ये खुश तो कभी भी नहीं होंगे। आप सारा कल्चर मान लीजिए, किसी का भी खुश नहीं होंगे, बल्कि इनका इरादा क्या है, तुम्हें अगर भलाई मिले तो ये ना खुश होते हैं। मुसलमान कोई तरक्की कर जाए, मुसलमान कोई प्रोडक्ट बना लें, खुश तो कोई भी नहीं होगा। हाँ, अगर बुराई पहुंचे तो खुश होते हैं। अब करो क्या, ये हाईलाइट कर लीजिएगा चीज, वइन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया इन्नल्लाह बिमा यामलून मुहीत। तुम अगर सब्र करो और परहेजगारी करो तो इनका मकर तुम्हें कुछ नुकसान न देगा। अल्लाह ताला ने इनके अमाल का इहाता कर रखा है। ये है जी आज के दौर के मुसलमान को दिया जाने वाला दर्स और सबक। तफरकाबाजी छोड़ो, बल्कि नेकियों पे सब्र करो और परहेजगारी करो। आप देखिए, सब्र के बहुत से रंग हैं, मल्टी कलर है ये। दीन पे अमल करो, अपने बच्चों को अमली नमूना बनकर दिखाओ, क्योंकि इसमें जवाब भी उन माँ बाप कला के लिए जो कहते हैं हम कैसे अपने बच्चों को इस कल्चर से बचाएं, हम कैसे इस तौर तरीके से बचाएं, और जो बेकार किस्म की फरसूदा रसूमात वो करते हैं, बच्चों को स्कूलों में भी करनी पड़ती हैं और ये वो, तो उसका जवाब नंबर एक अपना अमली नमूना दिखाइए, और दूसरी बात उनको कुरान से जोड़ दें। आपके बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, आज भी ऐसे लोग पैदा हो सकते हैं और होंगे इंशाल्लाह। शर्त यह कि माँ बाप युसारिऊ नफिल खैरात का एक अमली नमूना बने। भागते रहते हैं अल्लाह के रास्तों में, खप जाते हैं अल्लाह के कामों को निपटाने में। एक काम हुआ तो दूसरे की फिक्र, दूसरा हुआ तो तीसरे की फिक्र, किधर जाएं। आप अपनी फिक्र अल्लाह के दीन को बना लें। जरा सोचिए, हमारी फिक्रें आज क्या हैं? किस ब्रांड का जूता, किस डिजाइनर का कपड़ा, ईद के कपड़े कहाँ से आएंगे, क्या बनाएंगे, कैसे पहनेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। है ना ये सोच हमारे अंदर के? नहीं, उनको फिक्रें रहती हैं अल्लाह के कामों की। अपनी एनर्जीज लगाते हैं, अपनी स्किल्स लगाते हैं। तुमने किसको करना है, तुम किस चीज पे खो गए हो, बस ये प्रायोरिटीज बदल लीजिए। क्या हकीकत में आज हमारी ये फिक्र है? चंद जुमले बोलती हूँ शऊर को बेदार करने के लिए कि मैंने दीन में खानदान, दीन को खानदान में कैसे नाफिज करना है, मैंने अल्लाह के दीन को कैसे सरबुलंद करना है, मेरी दोस्तों को मैं कैसे बुलाऊं, क्या नाम दे के पुकारूं कि वो आ जाए और फिर उनको अल्लाह की बात सुनाऊं। आप इस फिक्र को बदल लीजिए, हमें आज के मुसलमान की फिक्र को बदलने की जरूरत है। याद रखिए कि हमारी प्रायोरिटीज बदल गई हैं, हमें कब्र और हशर के सवालों की कितनी फिक्र है। हमारी फिक्रें तो शायद ये हो गई कि वेडिंग प्लानर कहाँ से आएंगे, फूलों का अरेंजमेंट कहाँ से होगा, मेकअप कहाँ का होगा, पार्लर कौन सा। हमें तो अपने बच्चों की फिक्र भी है, तो किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा और क्या होगा। किसी एक मुल्क में थी तो रात जाते लोगों को मिठाई बांटते देखा मैंने, किसी सिस्टर को जहाँ गाड़ी रुके गाड़ी में से छोटे छोटे डब्बे निकालें तो बांटे। मैंने देख, उनको खुद ही समझ आ गया, कहने लगी असल में मेरी बेटी को फुला मुल्क, किसी वेस्टर्न कंट्री का नाम लिया, वहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, तो मैंने नीयत किया सारे शहर में मिठाई बांटूंगी। अल्लाह अकबर, हम भी मिठाइयाँ बांटेंगे इंशाल्लाह। जब लोगों को अल्लाह की इस किताब से जुड़ता हुआ देखेंगे तो अपनी फिक्र को बदलिए। स्कूलों कॉलेजों में इतने आला बड़े नाम है कि रातों को ही खड़ा कर देते हैं मुलाजमों को कि लाइन में खड़े हो जाओ, सुबह दरवाजा खुलेगा सबसे पहले फॉर्म हमें मिले। दाखला नहीं मिलता, सिर्फ फॉर्म मिलता है, और उसके लिए इतना अहतमाम। कुरान क्लासेस ऑफर होती ही रहे, किसको फिक्र है ना, फ्री है ना, छोड़ो कौन से पैसे हैं, नहीं आज ले लेंगे कल ले लेंगे। हमारी फिक्रें घर को बदलने की, औलादों के दिलों को बदलना है, तो आज से दुआओं में एक दुआ लिखिए, ए अल्लाह मेरी प्रायोरिटीज बदल दे, मेरे फिक्र मेरे गम बदल दे, और मुझे अगली जिंदगी के लिए तैयारी करने वाला बना। और याद रखिए कि अल्लाह ने किसी को भी गुनाहों के लिए पैदा नहीं किया, ये उसकी अपनी चॉइस है। हिदायत और गुमराही का सौदा इस दुनिया के बाजार में बिक रहा है, आपकी चॉइस है, जाकर हिदायत ले लीजिए या गुमराही ले लीजिए। जैसे सस्ती भी बिकती है महंगी भी, हर बंदा अपनी सोच और चॉइस से लेता है। गहरे रंग भी बिकते हैं, फीके भी बिकते हैं, बड़े बड़े डिजाइन भी बिकते हैं, छोटे भी बिकते हैं, आपका मेरा अपना फैसला है। कल कयामत के दिन कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि आज ब्लेम गेम भी बहुत है। अल्लाह ने चाहा ही नहीं, फिर अल्लाह ने मुझे उधर क्यों पैदा किया। और अगर आज मुसलमान नेकियां करने में सब्र ना कर सके, तो फिर कहीं ना कहीं आगे जाके, चाहे कब्र में और हशर में, पुल सरात पे, अल्लाह ना करे, कहीं और सब्र करना पड़ेगा। वैक्यूम नहीं रहता। तो याद रखिए कि दुश्मन को इतना अकलबंद नहीं है जितनी बेवकूफ़ी आज के मुसलमान से हो रही है। अल्लाह ताला आपको मुझे आफियत दे। यहाँ पे चंद माइंड मैप्स देखिएगा, हमारी दोस्ती किन से है, हम किन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, हम किन की रसूमात को मना रहे हैं, किन के तर्ज़े ज़िंदगी को अपना रहे हैं और किन के त्यौहारों को मनाते हैं। आइए अपना जायज़ा लेते हैं। क्रिस्टल क्लियर आंसर है, ये है आज के दौर का फितना। आगे जाके हम इस पे लग भी बात कर सकते हैं इंशाल्लाह। ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम के बारे में जाना जाए, उनकी ज़िंदगी को करीब से देखा जाए, उसका तरीक़ाकार कुरान पाक में सीरत के कुछ वाक़यात हैं, जिसमें से अब अगली आयात जो कई रुकू तक चलेंगी, ग़ज़वा ओहद पर तबसरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को हमारे तक पहुंचाने में सिर्फ हमारी तरह आरामदेह कुर्सियों पर बैठकर ही काम नहीं किया, अमली जिद्दोजहद की, और वो जिद्दोजहद इस हद तक की कि कभी घर का आराम भी छूटा और कभी गर्मी सर्दी भी सही और कभी खड़ी फसलों को तैयार छोड़कर अल्लाह के दीन के तकाजे पूरे किए। सारी ही जंगों में फतह हासिल हुई। ग़ज़वा उहद जो इस वक्त मेरे आपके पास है, इसमें वक्ती भगदड़ हुई जिसमें आप कह सकती है कि वो फतह नहीं हुई जो होनी थी और वो नुकसान भी नहीं होना जिसको होना था। आप इमेजिनेशन में लाइए कि अमूमन लोग किसका तذکرہ करते हैं, कौन सी तस्वीरें और शील्ड्स अपने घर की दीवारों पर और शोकेसेस में लगाते हैं जिसमें कामयाबियां होती हैं। अल्लाह का कलाम देखिए कि अल्लाह के नबी की बदर की जंग की डिटेल्स यहाँ नहीं दी, वो आगे आएंगी सूरत अनफाल में। तबूक की डिटेल्स इधर नहीं दी, वो आएंगी तौबा सूरत में। लेकिन जिस जंग में वक्ती तौर पे भगदड़ मच गई, उसका यहाँ एक पूरा शॉर्ट कोर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 2 माह तकरीबन उससे पहले के करीब के वक्त में हमने इसकी एक एक आयत को एक एक दिन में कम अज़ कम पढ़ा। कभी 2 आयतें होती थी, कभी 3, फिर कभी 3-4 भी हो गई। आगे जाके 1 महीने से ज़ायद के इंटेंसिव कोर्स में आले सूरत, यानी ये आले इमरान पढ़ी, तरतीब से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आयत बाय आयत। और अगर आप में से कुछ लोग इस्लाम 360 के चैनल से इस वक्त भी सुन रहे हैं, तो वहाँ भी हमारे शुरू के शायद 4 या 5 पारे जा चुके हैं। फ़ायदा उठा लीजिए बाद में, अभी तो बहुत तेज़ सफ़र है। सिर्फ इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम इस बात को देखें, गलतियों से सीखो। ये है ग़ज़वा उहद का लेसन, चूँकि हिस्टोरिकल है। कोशिश करूँगी कि इकट्ठा पढ़ कर आपको साथ लेकर चलूँ। और बात भी कुछ इसी किस्म की थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की ये दूसरी बड़ी जंग थी और प्लान जंग थी। इसमें दुश्मन पूरी तैयारी से आया था, 3,000 का लश्कर था, मुकाबले में मुसलमान सिर्फ 1,000 थे। उनमें से भी 300 लोग अब्दुल्ला बिन उबई के साथ मुकाम शौत पे जुदा हो गए, तो पीछे 700 रह गए। ज़रब लगाकर देख लीजिए, 350 के मुकाबले में, यानी 700 के मुकाबले में 3,000। एक एक मुसलमान तकरीबन 4-4 लोग दुश्मनों से घिरा हुआ था। लेकिन कैसे अल्लाह के नबी के हौसले बड़े थे, कैसे वो साथी थे, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़े से बड़े प्लान्स को लब्बैक कहते थे। अल्लाह ताला आपको मुझे इन सारी चीज़ों पे गौर व फिक्र करने वाला बना दे। तो फतह की खुशी और उसका जश्न मनाने से पहले शिकस्त या भगदड़ से सबक ले लो, ये है ग़ज़वा उहद का मेन थीम। चंद अखलाकी और कुछ कह लीजिए कि इंसान की इज्तिहादी गलतियाँ होती हैं जो बास दफ़ा जीती हुई जंग को भी हराने में चलती हैं। आप इसको सीरत के सेशंस में भी सुन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको नूरुल कुरान की ये वेबसाइट और जो भी हमारे पास प्लेटफॉर्म है, उस पे आपको सीरत की बहुत सारी किताबें मिलेंगी। और किसी और की भी सुनिए, बहुत सारे लोग सीरत पढ़ाते हैं इंग्लिश में भी और उर्दू में। अर रही को मखतूम फेवरेट बुक है, تجلیات نبوت بڑی معروف اور مختصر بک ہے، اسی طرح سے اور بھی بہت ساری بکس ہیں، تو آپ کسی ایک بک کو جو آپ کے مزاج سے ملتی ہو چوز کیجئے، اور اگر اسی رمضان میں ہی نیت کر لیجئے کہ روز ایک ایک دو دو چیپٹر پڑھتے ہوئے 30 دن میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر سیرت کا سفر کیجئے، تو آئیے چھوٹے چھوٹے سبق لیتے ہوئے اس بڑی سی جنگ کو یہاں آیتوں کی روشنی میں ہی سیکھتے ہیں. آیت نمبر 121، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اے نبی، اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. دین کے کاموں کے لیے صبح صبح نکلنا پڑتا. لکھے ایک شعور بیدار کرنے والا جملہ. بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے، مردوں کے کاروبار کے لیے نکلنے، جابس پہ جانے کے لیے تو صبح صبح گاڑیاں حرکت میں آتی ہیں. چلے آج کل چند رکی ہوئی ہیں تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ، اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو واپس ان کی جگہوں پہ لے جائے. کیا دین کے لیے بھی صبح صبح نکلتی ہوں؟ یعنی 7 بجے دورہ قرآن آفر ہو اور جانا بھی آدھا گھنٹہ دور ہو تو میں جاؤں گی؟ ایک سوال ہے صرف دین کی پرائیورٹی کو لینے کے لیے. اور یاد رکھیے، کچھ لوگ یہ قربانی نہ دیں گے تو پھر امت کا حال نہیں بدلے گا. جب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے، اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. جب شوت کے مقام پہ عبداللہ بن ابی، جو نام نہاد مسلمان تو تھا لیکن دل میں ایمان نہیں تھا، ہٹ کے الگ ہو گیا اپنی انا کی بات کرتے ہوئے، صرف ایک بہانہ بنا کر نکلا، تو دو قبیلے بھی تھے جو تھے تو مخلص، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، وہ بھی ہل گئے. ان کو لگا اچھا اتنے چلے گئے تو پھر. اور نوٹ کیجئے کہ اس دور میں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہی کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو اس وقت بھی تقریباً 1/3 لوگ دلوں میں نفاق رکھتے تھے کسی نہ کسی طرح کا، اور عبداللہ بن ابی کی لیڈرشپ اتنی اسٹرانگ تھی کہ وہ خود بہت لوگوں کا مائنڈ سیٹ کر سکتا تھا. لیکن اللہ کے نبی کے حوصلے نہیں ٹوٹے. آپ دیکھیں گے کہ 300 نکلے تو اللہ نے پہلے 3000 فرشتوں کی بات کی ہے کہ کوئی بات نہیں، 300 بزدل لوٹ گئے تو 3000 فرشتے میں بھیج دوں گا، اور تمہارا ایمان بڑھتا جائے گا، تمہاری استقامت فی الدین بڑھتی جائے گی، تو میں فرشتوں کو 5000 بھی کر دوں گا. ایک اینٹ ہلتی ہے نا تو اس کے ارد گرد کی 4 اینٹیں کم از کم ضرور ہل جاتی ہیں. دعا کیجیے آپ وہ اینٹ نہ بنے کہ جس کی وجہ سے باقی بھی سارے ہلنے جلنے لگے. اور فرشتے میرے آپ کے قدم آگے نہیں بڑھائیں گے، صرف ہم جہاں کھڑے ہیں اس کو جمائیں گے. کام آپ نے میں نے خود کرنا ہے. آئیے اب اس سارے شعور کے ساتھ اگلی آیتوں کو پڑھیے. بدر کی مثال دے کر مسلمانوں کی ہمت بڑھائی گئی کہ کیوں غم کرتے ہو، آج تو تم 1000 تھے. ظاہر ہے کہ جب 300 لوگ نکلے تو باقی ساتھی بھی ذرا ڈی موٹیویٹڈ ہوئے. آج کی زبان میں لوگ کہتے ہیں موٹیویشن لوز ہو گیا. ایمان والے کا موٹیویشن کبھی لوز نہیں ہوگا. یاد رکھیے، جو اللہ سے تعلق رکھ کر انرجی لے کر کام کرتے ہیں، ایک بھی نہ آئے اور 100 بھی آ جائیں اور 1000 میں آج ڈھل جائیں، لاکھوں میں چلے جائیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہمتیں بناتے. آیت 123 دیکھیے گا. جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جبکہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، اس لیے اللہ ہی سے ڈرو نہ کسی اور سے، تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ملے. لعلکم تشکرون. شکر گزاری کیا ہوتی ہے کہ نعمت دینے والے کی قدر کی جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے. اور بتایا کہ تم یہاں آج کتنے ہو، 700، 300 ہی نکلے ہیں نا 1000 سے، بدر میں تو 313 تھے. یہ ہے اصل میں اسٹرانگ لیڈرشپ. دعا کیجئے مجموعی طور پہ اللہ آج امت مسلمہ کو ورلڈ وائڈ لیڈر دے دے جو اس طرح گرتے ہوں کہ ہمت بنانے والا ہو اور ان کا مورائل بلند کرنے والا ہو. پھر فرمایا اور یہ شکر گزاری باعث نصرت و امداد ہو جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کہ آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا آپ کی مدد کرنا کافی نہ ہوگا. یعنی وہ 300 کو جانے دو، ویسے ہی بوجھ تھے، ان کا بھی انتظام کرنا پڑتا. سورت توبہ میں ہم پڑھیں گے کہ ایسے ادھورے دل والے لوگ اگر ساتھ چلے بھی جاتے ہیں نا کسی دینی کاز میں، وہ صرف بوجھ ہوتے ہیں اور ہی فتنے اٹھائیں گے. یاد رکھیے کہ سب لوگ کسی کاز کے ساتھ 100% مخلص نہیں ہوتے. دین کے ساتھ ہو سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ کسی ایک خاص کاز کے ساتھ ہوں. تو ایسے لوگوں کا پیچھے ہونا بعض دفعہ بڑا گراں گزرتا ہے لیکن فائدہ ہی ہوگا. क्योंकि फिर आप फोकस्ड होंगे, अपने होंगे। ये ऐसे ही कि जैसे घर में एक मेहमान आ जाए तो घर वाले रिजर्व तो हो ही जाते हैं, और अगर अकेले में हो तो इंसान अपने आप को ज्यादा इजी फील करता है। तो लोगों पे ज्यादा नजर ना रखिए, कितने आ रहे हैं, कौन है, किधर है, कितने हैं। कुछ लोग मुझे स्नैपशॉट्स देकर भेजते हैं, देखिए आज इतने लोग सुन रहे थे, आज 1,000 हो गए, फलां पे इतने थे। अल्लाह जानता है, मेरे लिए लीस्ट लीस्ट इंटरेस्टिंग थिंग है ये कि इस वक्त भी इवन कितने सुन रहे हैं, लाइव कितने सुन रहे हैं, और बाद में कितने क्लिक हैं। ठीक है, ये ख्वाहिश तो है कि दीन फैले, हमारे भी जरिए फैले, ये भी ख्वाहिश है, सदका जारिया हो, लेकिन मकसद ये नहीं है। मकसद ये है कि जो बात जाए वो खैर से जाए। कल ऐसे ही एक यूट्यूब पे भी काम करते हैं, तो वहाँ ट्रम्प सदर है, और इसी तरह कुछ एक ऐसा मैंने खुद नहीं कभी किया, लेकिन खुद ही से आ गया कि इस वक्त लाइव क्या क्या हो रहा है। तो यकीन करें उसमें कॉन्सर्ट्स के भी थे, मैंने खोला कोई भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सामने दिख रही थी उनकी वो थंबनेल्स, तो उसमें अमेरिका से भी था और इधर उधर। सिर्फ आउट ऑफ क्यूरोसिटी देखा, मिलियंस में लोग कॉन्सर्ट देख रहे होते हैं। तो क्या करना है आपने, नंबर्स को, हेड काउंट नहीं है, लिखिए दीन में हेड काउंट नहीं है, बात हक कीजिए, अल्लाह खुद ही पहुंचा देगा, ये मेरा ईमान है। दिल से निकले, हक निकले, सच निकले, पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, टीम वर्क के साथ काम करें। अल्लाह के दीन को गालिब करना है, अल्लाह मिनहई सुलह यहतसिब का काम करेगा। इसके अलावा आप मार्केटिंग पे लाखों डॉलर भी लगा दें, आपको मिलेगा वही जो आप होंगे। तो ज़रूरत है इस बात की कि इन आयात से हम अपने लिए अमल की बातें लें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने जंगें लड़ी थी। आज हमारे इल्मी मैदान है और आज हमारे अमली मैदान है। अल्लाह ना करे कोई वक्त आ जाए कि उम्मत मुस्लिमा को कोई जंग भी लड़नी पड़े। तो ऐसे वक्तों में नजरें अल्लाह पर लगाइए। तो फरमाया, जब आप मोमिनों को तसल्ली दे रहे थे कि आसमान से 3,000 फरिश्ते उतार कर अल्लाह का तुम्हारी मदद करना तुम्हें काफी ना होगा, यानी 10 की जरब लगा दी है बस अल्लाह ने। एक छोटी सी एक्टिविटी जो अक्सर स्टूडेंट्स ने तो कई बार की होगी, नए लोग भी कर ले, अपने नोट्स में 1 लिखिए, एक। अब इसके राइट साइड पे 0 लिख ले, अपने अपना हाथ हिसाब लगाइए, गिनती जैसे लिखते हैं वैसे लिखा रही हूँ, कितने हो गए, 10। एक 0 और लगाइए, 100। एक और लगाइए, 1,000। करते जाइए, शायद 6 0 लग जाएं तो लाख होता है, कुछ याद नहीं रहती ऐसी चीजें। बहरहाल आप देखिए कि अब एक के साथ 0 लगते गए और आप 10 से 1,000 और फिर लाख में ढल गए। अब जरा सा हाथ रख कर एक को छुपाइए, एक को खत्म कर दीजिए, पीछे क्या रह गया, 0 रह जाता है। ये है जम, आप खड़े रहे अल्लाह के नाम पे, अल्लाह अपनी मदद का एक 0 लगाएगा, 10 होंगे, यानी आपको 10 मुखलिस साथी मिल जाएंगे जो इब्तदाई कॉज में आपके साथ थे, तनहा चले थे, लोग मिलते गए, काफला बनता गया या कारवां बनता गया। वही मिसाल इस पे ले लीजिए, आप गिरे और अल्लाह ना करे आपकी नीयत गिरे, आपका मोटिव भी गिर जाए, आप जिस मकसद के लिए ये काम कर रहे हैं वो ही बदल जाए, अल्लाह ना करे, तो सब 0 है। ये 0 अल्लाह लगाता है, हेड काउंट नहीं करना। तसल्ली के लिए पहले 3,000 बोल के अब क्या कहा, क्यों नहीं, बल्कि अगर तुम सब्र करो, परहेजकारी करो और ये लोग इसी दम तुम्हारे पास आ जाएं, तो तुम्हारा रब तुम्हारी इमदाद 5,000 फरिश्तों से करेगा जो शानदार होंगे, जो निशानदार होंगे। यानी इंसानों के जाने से घबराते हो, मैं फरिश्ते दे दूंगा बल्कि और भी बढ़ा दूंगा। और अक्सर हम अपने साथियों के साथ जब किसी भी बहुत ही डिटेल्ड मीटिंग में हो तो वो रूम छोटे पड़ जाते हैं, तो हम याद भी करते हैं, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, कि इस वक्त सिर्फ टीम के उतने लोग हैं जिसके तीसरा क्या दूसरा हिस्सा भी स्टूडेंट्स नहीं होते थे। और मैंने अब आज ये बात हुई है तो नए साथियों के लिए बताऊं कि शुरू में जब हमने ऑनलाइन क्लासेस की, और अल्लाह की रहमत और तौफीक से जितने सोशल मीडियाज उस वक्त मौजूद थे उनमें ही की था पहल टॉक, सबसे पहले उर्दू की क्लासेस करने का अल्लाह ताला ने मौका हमें ही दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज देखिए कितने मीडियम्स आ गए और कितने लोग काम कर रहे हैं, 5 6 10। जिस दिन 20 से ऊपर स्टूडेंट्स होते थे ना, तो वो 7 काम करने वाले 2 3 जो इस वक्त भी माशाल्लाह जिम्मेदारियों पे हैं, और अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमतें करें। उनमें से एक चली गई दुनिया से, अल्लाह उनकी कब्र को ठंडा कर दे। 20 लोग होते थे ना तो ये अपने कंधे थपथपाते थे, वही खुशी तो होती है जैसे मेहमान के जाने के बाद आप जरा रिलैक्स होते हैं ना, चले दावत है, वो किधर है बिरयानी, किधर है वो लाओ, रिलैक्स लेयर मूड होता है। तो ये कहते थे आज आपको तो बात है, उस दादा कितने थे, आज 20 थे। मैं कहा वाह जी वाह, कमाल हो गया, ये तो ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया में इस्लाम आ गया, और आज पता भी नहीं है क्या है। कभी लोगों को ना देखिए, आज भी नॉर्वे में, जिसका नाम कितना लेते हैं साथी, हमारी पहचान ओस्लो बन गया, और अल्लाह इसको क़यामत तक कायम रखे उस इदारे को और साथियों को भी काम करने की आखिरी दिन तक, और उनके बाद उनकी नस्लों को इसकी तौफीक दे। यकीन कीजिए दिसंबर की यख बस्ता रातें और दिन, जब -10 से 15 पे भी कभी जाता है, 6-7 स्टूडेंट भी मेरे सामने बैठे होते थे और मैं पढ़ाती थी। गवाह हैं लोग, आप जाके पूछ लीजिए हॉस्टलों वालों से। कभी नहीं कहा छुट्टी दे दें, कैंसिल कर दें। अब ये 2-4 लोगों को मैं पढ़ाऊं, और दिल से खुशी, दिल की खुशी से हमेशा पढ़ाया। ये नहीं कहा कि थोड़े लोग हैं तो छोटा दर्स है, बड़े ज्यादा लोग हैं तो बड़े दर्स है। तो याद रखिए, वरना मदद तो अल्लाह की तरफ से है जो गालिब व हिकमत वाला है। इस इमदाद इलाही का मकसद ये था कि अल्लाह काफिरों की एक जमात को काट दे या इन्हें जलील कर डाले और सारे के सारे नामुराद होकर वापस चले जाएं। ए पैगंबर, आपके इख्तियार में कुछ नहीं। जरा सा इस जुमले को नोट कीजिए जो अल्लाह सुबहान तला आयत 120 में दे रहे हैं, और हमारी नातों में जो नातिया कलाम में जुमले बोले जाते हैं उसको भी सामने रखिएगा, तो आपके मेरे अकीदे की इसलाह होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम और आपकी शान क्या है। ए पैगंबर, आपके इख्तियार में कुछ नहीं, अल्लाह चाहे तो इनकी तौबा कबूल कर ले या अजाब दे, क्योंकि वो तो जालिम है। आसमान और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है, वो जिसे चाहे बख्शे, जिसे चाहे अजाब करे, अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला और मेहरबान है। यानी किसी को हिदायत देना या ना देना, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का काम है। कभी आप लोगों के और उनकी हिदायत के बीच में मुफ्ती ना बने, इसको तो हिदायत ही नहीं मिलनी, इसके तो नसीब में नहीं। कभी ना कहीं, और खास तौर पर अपने बच्चों को ये बद्दुआ ना दें, क्योंकि ये अल्लाह के कानून को अपने हाथ में लेने वाली बात है। अब आप देखिए कि गज़वा उहद का तस्करा चल रहा है, बीच में कुछ ऐसी बातें थी और एक जुमला सिर्फ सूद से मुतल्लिक है। क्या है, आइए देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा, ऐ ईमान वालों, बढ़ा चढ़ा कर सूद ना खाओ, अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम्हें निजात मिले, और इस आग से डर जाओ जो काफिरों के लिए तैयार कर दी गई। सोचिए, बाहर लगता है कि बेरब्त बात है, क्योंकि आगे फिर कुछ और चीजें हैं। तो इसकी वजह क्या है कि इंसान बाज दफा अल्लाह की नाफरमानी इसलिए करता है कि दुनिया की दौलत मिल जाए, दुनिया की खैर मिल जाए, और न जाने क्या कुछ लग्जरियस लाइफ मिल जाए। लेकिन हकीकत में खैर किसको मिलेगी, दुनिया किसकी जन्नत नज़ीर होगी। अगली आयतों को दिल के साथ सुन लीजिए, तो इसका जवाब आपके मेरे सामने मौजूद है कि आप और मैं अगर इस दुनिया में, इस दुनिया का ही अपग्रेड वर्जन करने की बजाय और छोटे से बड़े घर के ख्वाब देखने की बजाय करें क्या, यहाँ से एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं आप चाहें तो अपने लिए थिंग्स टू डू की। वातीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, और इस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, वो तो पीछे कर दिया, तुम्हारा उधर क्या काम, अल्लाह ने तुम्हें आग के लिए पैदा नहीं किया। बल्कि क्या करो, और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और अपने रब की बख्शिश की तरफ और इस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसका अर्ज आसमानों और जमीन के बराबर है, जो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। सारी उला मगफिरा। आज दुनिया में नेकियों की तरफ भाग दौड़ कीजिए, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, माशरे के अंधेरे फैलाने के लिए, माशरे के अंधेरों को मिटाने के लिए, फिरका वारियत को ख़त्म करके एक अल्लाह से लोगों को जोड़ने के लिए। देखिएगा अल्लाह ताला आपको ये जन्नतें अता करेगा। ये है असल में कंपटीशन की जगह। अगर भाग दौड़ करनी है, स्टाइल लाइफ स्टाइल को ऊंचा करना है, अपग्रेड करना है, तो इसको करो, और ये करने की ज़रूरत है। बहसों को छोड़ो, झगड़ों को छोड़ो, इख्तलाफात को छोड़ो, मुखालफत में ना पड़ो। वह सारी विला मग़फ़िरतिन, बैठ के तबसरे ही ना करते रहो बड़े खूबसूरत तरीके से, बल्कि अमली कोशिश करो। ये सारी भागना है, अमली कोशिशें करो, जान लगाओ, भाग लगाओ। इस वक्त हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं आजकल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये फैसला है, हम इस पे बहुत खुश हैं। पिछले 2 साल करीब के हैं, ऐसे ही कल जब इफ्तारी का वक्त आया तो याद आ गया कि पिछले साल कहाँ थे, फिर उससे पिछले साल कहाँ थे, फिर सोचा तो उससे पिछला साल भी याद आ गया, और उससे पिछला याद आया, और उससे पिछला मुझे नहीं याद आया। आई थिंक सो वो स्लो था। पिछले 2 साल जोहराबाद के दौरे कुरान है, एक खुशाब का था, एक जोहराबाद का, रहे एक ही जगह। उससे पिछले साल पेरिस में थे, उससे पिछले साल एटलांटा में थे, अगर मैं गलत ना कहूँ। तो मैं एकदम, मेरी आंखें भर आईं कि अल्लाह तेरे फैसले, तेरे हुक्म, तेरे दीन को फैलाने के लिए अगर हमें आज तक याद ही नहीं कि कब अकेले रोज़ा खोला था, ये तेरी रहमत नहीं, तेरे वादों की सच्चाई नहीं है। तो वह सारी विला मग़फ़िरत है मेरे रब्बिकुम। मत सोचिए कि अगर आप अल्लाह के दीन की तरफ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में कोई कमी आएगी। मैंने तो इजाफे ही देखे हैं। कहाँ इंसान अपने इतने लाड और नखरे देखे जो दूसरे आपके देखते हैं। ज़रूरत इस बात की कि कुछ लोग तो डेडिकेशन के साथ ये काम करें। दुआ कीजिए अल्लाह हमारा नाम इसमें लिख लें इस साल। और जब अल्लाह ताला के पास फाइल्स जमा हों, बड़े बड़े आइमा किराम की, मुहद्दिसीन की, ताबईन, तबा ताबईन और दीन के खिदमतगारों की, तो अल्लाह आज हम सब की जो इस वक्त भी हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे हैं हक की दावत के लिए, और जो इसके अलावा किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो वाकई अल्लाह का दीन फैला रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब के नाम उसमें लिख दें। इस वक्त भाग दौड़ की सदी है। ये जो एक जमूद आया ना, ये लॉकडाउन जो है ना, ये हैंड ब्रेक लग रही है आज भी। सब्र, वो किसी ने एक नशीद भी भेजा कि बहुत भागते थे, अल्लाह ने रोक दिया और पता नहीं क्या किया, अल्लाह ही जाने क्या हुआ है। लेकिन ऐसे लगता है कि एकदम स्टॉप दिया, स्टॉप, रुक जाओ, अब मांगो मुझसे काम, फिर दूंगा तुम्हें। कितने मौके आए तुम्हें मिले, तुम तो अपने ही कामों और अपनी ही जॉब्स और अपने ही दुनिया के मामलात में बिजी थे, अब मांगोगे तो दूंगा। तो इस वक्त सजदों में पढ़कर मांगिए, रोइए कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। और सारी विला मग़फ़िरत मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, दो चीज़ें, एक बख्शिश, पिछले गुनाहों पे शर्मिंदा हों हम सब, और दूसरी जन्नत, अर्दुहस समावात वल, किसको मिलेगी? मुत्तकीन को मिलेगी। मुत्तकीन कौन होते हैं? एक दूसरी लिस्ट बनाइए, अल्लज़ीना युन्फिकून फिस्सर्रा वद्दर्रा, जो परहेजगारों के लिए तैयार की गई थी। इससे पहले एक हदीस सुन लीजिए जो हमने आयत पढ़ी अभी सूद से मुतल्लिक। इब्ने माजा की रिवायत है 1173, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये बात पहुंची। मेराज की रात में कुछ लोगों के पास से गुजरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेराज की रात मैं कुछ लोगों के पास से गुजरा जिनके पेट मकानों की मानिंद थे, इनमें बाहर से सांप दिखाई देते थे। मैंने कहा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, ये सूद खोर हैं। अल्लाह ताला इस चीज़ से हमारी नस्लों को भी बचाए। अब लिस्ट तैयार करते हैं किन की? मुत्तकीन की। और इस रमज़ान में तो हमने अल्लाह से तकवा ज़रूर ही मांगना है कि ऐ मेरे मालिक, इतना तकवा तो देना कि हराम से बचें, फिर उसको बढ़ाकर इतना कर देना कि मकरूह से बचें, और उससे बढ़ाकर फिर उसको इतना कर देना कि हम मुश्तबे से भी बचें। बस ये तकवा के तीन दर्जे थे जो बोल दिए। और क्या खूबी है उनकी? अल्लाह ताला ने जो बताई, जो लोग आसानी में और सख्ती के मौके पर भी अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं, गुस्सा पीने वाले, लोगों से दरगुजर करने वाले, अल्लाह नेकुकारों से मोहब्बत करता है। गुस्सा आता है मुत्तकी को? ये नहीं कहा कि गुस्सा नहीं आता उनको, वो तो गुस्से से पाक, उनकी तिली और स्प्लीन ही निकाल दी गई। याद रखिए, मुत्तकी को भी गुस्सा आता है, और खिलाफ शरा काम किसी को करते देखना और गुस्सा ना आना, ये तो बड़ी बहुत बड़ा ऐब है। बेटियों को अजीब व गरीब हाल हुलिये में देखना और बाप के माथे पे एक तेवरी ना आए, ये तो बड़ी अजीब बात है। मुत्तकी को गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ लफ्ज है काज़मीन अलगैज़, और कज़ूम उस नाली को कहते हैं जो बिल्कुल हलक में से गुजरती, और सांस की नाली कह लीजिए आप उसको, यानी काबू करना, गुस्से पे काबू पाना। बात बात पे गुस्सा आ गया, और बात गुस्सा भी इस पे कि नमक तेज हो गया पकौड़ों में, और गुस्सा भी इस पे कि 5 मिनट बेगम लेट हो गई, ये तो ज्यादती है। आपको बड़ी जरूरत है इस औरत की? एक दिन ये घर से चले थे, आपको लगेगा मासी भी गई, धोने वाली भी गई, खाने वाली भी गई, और हजरत उमर का एक कॉल याद आ गया मुझे। किसी बात पे बीवी पे गुस्सा आया होगा, लेकिन कोई इजहार नहीं किया। किसी दूसरे ने कहा, आपने अपनी बेगम को कुछ नहीं कहा, या कुछ ऐसी बात है, सिर्फ समझ लीजिए, कहीं आएगी तो कोट भी कर दूंगी आपको। कहने लगे, मैं उस औरत से कैसे खफा हो सकता हूँ जो मेरा खाना भी पकाती है, जो मेरे कपड़े भी धोती है, और बाकी सब कुछ। तो याद रखिए, मर्दों के लिए ये पैगाम है, छोटी छोटी बातों पे बीवियों से रूठ नहीं जाते, फौरन मना लें, क्योंकि बीवी एक लम्हा नहीं बर्दाश्त कर सकती आपकी नाराजगी को। और यही बात उन बिगड़ी हुई बीवियों के लिए भी है, जिनका काम ही सिर्फ ये है कि बस ये हमारी हर बात माने। आम जिंदगी में गुस्से के बहुत से मौके आते हैं, आपको अपने बच्चों पे भी गुस्सा आता है। अपने सारे गुस्से को जमा कीजिए और जहालत पे गुस्सा कीजिए, माशरे के अंधेरों पे गुस्सा कीजिए, इसको एनर्जी बनाइए, फ्यूल बनाइए और अल्लाह के दीन के काम कीजिए। हम कहते हैं तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया था, तो ये कौन सी बहादुरी है भाई? गुस्सा कोई दिलाए तभी तो आता है। आप किसी से ना मिलें, कोई ना आपको मिले और आप कहते हैं आज तो 100 दिन मुझे गुस्सा नहीं आया, तो ये ज्यादती होगी। लिहाजा छोटी छोटी बात पे भड़क जाना, ये अपनी एनर्जी भी जाया करना और अपनी सेहत को भी खराब करना है। अल्लाह ताला हमें मुत्तकीन वाली ये खूबी अता फरमाए। और अगली खूबी देखिएगा, वल्लसीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा, जब इनसे कोई नाशायस्ता काम हो जाए या गुनाह कर बैठे तो फौरन अल्लाह का जिक्र और अपने गुनाहों के लिए इस्तग़फार करते हैं। फिल वाक़े अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाहों को बख्श सकता है, और वो लोग बावजूद इल्म के किसी बुरे काम पर अड़ नहीं जाते। अल्लाह ताला हमें ऐसा ही किरदार अता फरमाए। क्या मिलेगा? इतनी प्यारी खूबियों वाले इंसानों को अल्लाह ने बसाना है जिस जिस कॉलोनी में, उसका नाम है जन्नत। एक दो जुमले नोट कीजिए तो फिर बदला भी सुन लेते हैं। आप देखिए कि अक्सर जन्नत की जब बात आती है ना, तो हम कहते हैं जन्नत बड़ी खूबसूरत होगी, मसमा नहरें होंगी, वहाँ के घर बड़े प्यारे हैं, वहाँ की ज़मीन बड़ी अच्छी है, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन जेम है, जन्नत का असल हुसन वहाँ रहने वाले लोग हैं। ये दुनिया ट्रेनिंग सेशन है, किरदार साजी हो रही है उन लोगों की जिनको बाद में जन्नतों में बसाना है। दुनिया का कोई बहुत पौश इलाका जरा जहन में लाइए, और आज भी हमारे अपने मुल्कों में भी होंगे, बाहर भी हैं, इस जगह रहने के ये तकाजे हैं, ये करेंगे वो नहीं कर सकते, वो करेंगे ये नहीं। अल्लाह ने जन्नत के शहरियों का एक खास क्राइटेरियन रखा जो इनायतों में मिल गया। तसव्वुर में लाइए कि गुस्से में बेकाबू होने वाला शख्स जन्नत में पहुंच गया, तो पहले तो बीवी की मुशामत आती थी, हो सकता है हुरों की आ जाए। अल्लाह ऐसा नहीं करेगा। गीबत करने लिए एक औरत जन्नत में पहुंच गई, जरा सोचिए, हुस्न खत्म होगा तो अपने किरदार को यहां निखारिए, अल्लाह वहां आपकी जन्नत को निखार रहा है। और अपने अंदर ये दुआ और ख्वाहिश पाल लीजिए कि अल्लाह मैंने अपने किरदार को ऐसे चमकाना है जैसे बर्तन को स्क्रैप के साथ चिपकाते हैं, तो मिलेगा क्या? अल्लाह ताला के पास बदले के हैं, उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, इन्हीं का बदला इनके रब की तरफ से मग़फ़रत है और जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। इन नेक कामों के करने वालों का सवाब क्या ही अच्छा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें जन्नत भी दे, लेकिन उससे पहले ये काम करने वाला भी बनाए। अक्सर लोग जन्नत तो मांगते हैं लेकिन जन्नत मिले जाने वाले काम नहीं मांगते, तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें वो सारे काम करने की तौफीक अता फरमा कि जो तेरी जन्नत में ले जाए। قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين, तुमसे पहले भी ऐसे वाकयात गुजर चुके हैं, सो जमीन में चल फिर कर देख लो आसमानी तालीम के झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। आम लोगों के लिए तो ये कुरान बयान है और परहेजगारों के लिए हिदायत और नसीहत है। जरा से इस पे भी चंद सेकंड गौर कीजिए। आम लोग कुरान को बस पढ़ते हैं, बरकत लेते हैं, सही पढ़ते हैं तो सवाब भी मिलता होगा, हर लफ्ज़ पे 10 नेकियां, लेकिन मुत्तकीन जिनका मौजू चल रहा है वो इस किताब से हिदायत और नसीहत लेते हैं। तो दुआ कीजिए कि हमने इस कुरान को किताब हिदायत बनाना है। ये नसीहत की किताब है, ये हिदायत की किताब है। इसके बगैर इस किताब का मकसद आमद हासिल नहीं होगा। ये वो चीज़ है कि जिसको आप अपनी ज़िंदगी की एक मिसाल से ले लीजिए। घर में हर मशीनरी का कोई मकसद है। आपको फ्रिज मिली, आप उसको इस्तेमाल कीजिए, पानी ठंडा करें, कुछ इमरजेंसी के लिए यूज़ होने वाली चीज़ें फ्रीज कर लीजिए, और कोई उसको एज अ फ्रिज यूज़ करने की बजाय कि बिजली बहुत ले रही है बंद करें, कुछ दिन बंद रही तो कहा कि अब इसमें कपड़े रख लेते, अलमारी बना ले, चंद दिन बस स्मेल आएगी इसमें से अगर यूज करके बंद किया तो। हम में से कुछ लोगों ने कुरान के साथ भी यही किया। इस किताब में तो ठंडक देने वाला सामान था, हमने इसको सिर्फ अपने चंद छोटे छोटे मकासद के लिए रख लिया। बेटी की शादी पे सर पे रख लीजिए, कोई फौत हो गया तो राहदारी के लिए सूरत फातिहा सूरत बकरा पढ़ लीजिए, मैयत के साथ कोई एक नुस्खा दफन कर दीजिए, इल्ला माशाल्लाह। किसी ने अपना एक तजुर्बा शेयर किया था कि शादी का मौका था और हर वो चीज़ हो रही थी जो अक्सर नहीं होनी चाहिए। जब रुख्सती का वक्त करीब आया तो उन्होंने कहा कि ठहरो ठहरो, रुख्सती नहीं भी हो सकती, कुरान तो लाइए। पूरे हॉल में किसी के पास कुरान न मिला। कहा जाओ करीब सी मस्जिद, करीब की मस्जिद से लाओ। और एक बच्चा आया और इमाम साहब से कहा कि ये कुरान तो दीजिए। उन्होंने कहा जो पूछना है मुझसे ही पूछ लीजिए। कहा नहीं, असल में कुरान चाहिए, बेटी के सर पे रखना शादी के मौके पे। इमाम साहब को तकलीफ़ तो बहुत हुई, अंदर गए और एक जुस्दान में लिपटा हुआ किताब जो भी चॉइस थी उनको लाके दे दी, वो ले गया। घंटा सवा गुजरा, वापस आया। इमाम साहब ने किया क्या था कि कुरान पाक को निकाल कर उसकी जगह कोई आम किताब डाल दी थी, शोर बेदार करने के लिए, अच्छा अंदाज था। और कहा जब खोलेंगे देखेंगे तो फिर आएंगे तो नसीहत करूंगा। लेकिन हुआ क्या कि वो बच्चा जब वापस करने आया तो कहा जी बहुत शुक्रिया, हमारा काम हो गया। उन्होंने कहा काम हो गया? कहा हाँ, खोला नहीं, इसमें क्या था? कहा नहीं, खोलने की तो जरूरत नहीं, हमने बस बंद ही रखा। तो उनके जुमले थे कि मुझे दुख तो उस वक्त भी हुआ था कि जब वो मुसफ खरीद लेने आया, कुरान लेने आया कि बेटी के सर पे रखना है किसी की, लेकिन अफसोस इस पे हुआ कि उन्होंने खोला भी नहीं, और खुशी इस बात की है कि मैंने कुरान पाक की तौहीन होने से बचा लिया और कोई आम किताब डाल दी। अब इस जुमले पे जरा से चंद सेकंड गौर कर लें तो आज उम्मत का हाल क्या है, कैसे नहीं बंद कुरान की ताजीम करते हैं, खुली किताब का इनकार करते हैं, इसके कवानीन कहाँ कहाँ पाँव में रोनते हैं। वो शादी जिसके कार्ड पे कभी लिखा जाता था निकाह मिन सुन्नती, और उसके अंदर हर वो चीज़ जो सुन्नतों को पामाल करने वाली हो, और बात चाहिए कि अक्लमंदों के लिए तो सिर्फ इशारे ही काफ़ी हैं। हाज़ा बयानुल लिन्नासि व हुदा व मौइज़तुल मुत्तकीन। अल्लाह इसको हमारे लिए बयान, हुदन और मौइज़ा बना दे। अब दोबारा ओहद की तरफ रुख पलटता है, ये भी अल्लाह ताला की एक बड़ी प्यारी सुन्नत है कि किस तरह से बीच बीच में इसलाह करते हुए चीज़ों को पेश किया जाता है। फरमाया वला तहिनू वला तहज़नू, तुम न सुस्ती करो और ना गमगीन हो, तुम ही गालिब रहोगे, शर्त एक है, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमानदार हो। अल्लाह ने मुसलमानों को फतह की और गलबे की खुशखबरी दी, लेकिन उसके रास्ते के दो जरासीम जो कोरोना से भी ज्यादा सख्त है, नुकसानदेह, वो क्या है? सुस्ती। सुस्ती छोड़ दीजिए, बहुत सारे लोग मुनाफिक नहीं होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सुस्त होते हैं। चलिए अपने लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मेरी सारी सुस्तियाँ और ख़ास तौर पे दीन की सुस्तियाँ, और मज़ीद नेकियाँ कर सकती हूँ लेकिन सुस्ती की वजह से, अपनी स्पीड के स्लो होने की वजह से नहीं कर पाती, अल्लाह ताला उनको तू दूर कर दे। अब टूटे हुए दिलों के ऊपर फाहे रखे जा रहे हैं, गमज़दा लोग थे। ई यमसस्कुम करहुन फ़क़द मस्सल क़ौम करहुम मिस्लु, अगर तुम जख्मी हुए हो तो तुम्हारे मुखालिफ लोग भी तो ऐसे ही जख्मी हो चुके हैं। यानी तुम्हारे आज 70 ओहद में शहीद हो गए तो बदर में भी तो गैर दूस मुखालिफ कौम के 70 लोग मारे गए थे ना। हम दिनों को लोगों के दरमियान अदलते बदलते रहते हैं। शिकस्ते ओहद यानी वक्ती जो भगदड़ उसकी तरफ इशारा इसलिए थी कि अल्लाह ताला ईमान वालों को जाहिर कर दे और तुम में से बास को शहादत का दर्जा अता फरमाए। अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। मॉरल्स लिए जा रहे हैं, ये भी वजह थी कि अल्लाह ताला ईमान वालों को बिल्कुल अलग कर दे और काफिरों को मिटा दे। अम हसिब तुम अंतदुल जन्ना, क्या तुम ये गुमान कर चुके हो कि तुम जन्नत में दाखिल किए जाओगे? सोचिएगा, क्या तुम ये समझ बैठे हो कि तुम जन्नत में चले जाओगे? हालांकि अब तक अल्लाह ताला ने ये जाहिर नहीं किया कि तुम में से जिहाद करने वाले कौन हैं और सब्र करने वाले कौन। ये है जन्नत की ख्वाहिश करने वालों के लिए एजेंडा। याद रखिएगा कि जन्नत अगर सिर्फ ख्वाहिशों से मिलती ना तो कोई भी बाहर ना रहता। वजह क्या है? किस दिल में जन्नत की ख्वाहिश नहीं होगी? और अगर जन्नत दुआओं से मिलती तो बहुत सारे लोग जन्नत में चले जाते। जन्नत मिलेगी कोशिशों से, बचपन से एक जुमला सुनते आए, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाक ही अपनी फितरत में ना नारी है ना नूरी है। आप मैं यहाँ बैठ कर अपना जायजा ले सकते हैं, क्या वाकई मैं रोड टू जन्ना पे हूँ, क्या मैं सबीलुल जन्ना पे चढ़ी भी हूँ कि नहीं, कैसे पहुंचूंगी जन्नत में जबकि रास्ता वो नहीं है। बगैर अमल के, बगैर कुर्बानियों के जन्नत मिलेगी, ठंडे ठंडे मिल जाएगी, एसी में बैठकर, सोफे पर या रिक्लाइनर पर बैठकर, सुनते सुनते और सुनाते सुनाते जन्नत मिल जाएगी, ऐसे नहीं होगा। देखिए, जन्नत की कीमत सब्र है, और ये सब्र कौन सा, जब इल्म पे आप अमल करने लगेंगे फिर बातें सुननी पड़ेंगी। किसी को कहें तो सही, बेटे की शादी करूंगी बहुत सादगी से, कोई रस्म नहीं करूंगी, फिर देखिए लोग क्या कहेंगे आपको, कि देखे ना रस्मों में तो खुशियां होती हैं, क्या कमारों की शादी है कि ब्याहों की, ये तो ना ना करें, ऐसा तो नहीं है ना। दिल में तमन्ना हो शहादत की और सुई भी ना चुभे, किसी का दिल भी ना दुखे, तो जब भी आप अल्लाह के इस कलाम पे अमल करने की कोशिश करेंगे, लोग आपको बातें करेंगे, तो उस पे आपने मैंने क्या करना है, सब्र करना है, और अल्लाह को सब्र बड़ा प्यारा लगता है। तो दीन पे अमल करना सब्र के करने के मुतरादिफ है, खास तौर पे गुजरते वक्त के साथ साथ। जंग से पहले तुम शहादत की आरजू में थे, अब इसे अपनी आंखों से देख लिया, यानी दावे तो बहुत करते हैं लेकिन जब वक्त आता है उस नेकी को करने का तो फिर कितने कर पाते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रसूल ही हैं, इससे पहले बहुत से रसूल हो चुके, क्या अगर इनका इंतकाल हो जाए या शहीद हो जाए तो इस्लाम से अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे, और जो कोई फिर जाए अपनी एड़ियों पर तो अल्लाह ताला का कुछ ना बिगाड़ेगा, अन करीब अल्लाह ताला शुक्रगुजारों को नेक बदला देगा। शख्सियत परस्ती का रद के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी शख्सियत परस्ती ना करो, कि आप हैं तो हम हैं, आप गए तो हम भी गए। तो लिखिए एक जुमला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ता कयामत हैं, तो मिशने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ता कयामत है। रिसालत खत्म हो गई, कारे रिसालत अभी भी बाकी है। ओहद में एक भगदड़ मची, हजरत मुसब बिन उमैर की शहादत पे, जिनकी शक्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसल थी, तो खबर फैल गई कि आप शहीद कर दिए गए, और वैसे भी आप जख्मी भी हुए, आपके जिस्म से खून भी निकला। डिटेल्स आप सुन लीजिए इस गजवे के हालात को सुनते हुए। लेकिन अल्लाह ने हौसले नहीं टूटने दिए। बात यही है कि लीडर्स का एक वक्त होता है, और अगर मैं आपको और अपने ऊपर ले लूं तो माँ बाप का भी एक वक्त ही है बच्चों को गाइड करने का। कल हम नहीं रहेंगे, जैसे माँ बाप नहीं रहते, आगे वही बढ़ेगा जो अल्लाह के लिए होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होने या ना होने को बुनियाद बनाकर पीछे रहने वाले आज ही इस आयत को सुन लें। तकरीबन इस आयत के 7 साल बाद हकीकत में वो वक्त आ गया कि जिस दिन हजरत अनस के बकौल मदीना की गलियों में गम था। वो तो गए लेकिन दीन आज भी मौजूद है। ये अल्लाह के नबी के खूबसूरत साथी थे जिन्होंने पीछे से उस सिलसिले को बढ़ाया, और आपका सबसे बड़ा कारनामा ही ये है। बाकी अंबिया से अगर तकाबुल करें, क्या आपने अपने पीछे एक ऐसा गिरोह छोड़ा कि जो मंझे हुए थे, जो जमे हुए थे, कान नौ बुनियान मरसूस थे, सीसा पिलाई दीवार थे, कि उन्होंने आपके जाने से जो एक हला आया उसको पुर कर दिया। जहां अल्लाह के नबी का पाँव पड़ा वहां उन्होंने अपना सर रख दिया। अल्लाह ताला आपको मुझे भी इसी तरह की डेडिकेशन के साथ अल्लाह के नबी के इस दीन को पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। बाकी मौत तो उसके बारे में अल्लाह का फैसला क्या है, जो आपको मुझे अब बहुत अच्छी तरह मालूम हो गया, और वो क्या है कि वमा कान अली नफ्सन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह, बगैर अल्लाह के हुक्म के कोई जानदार नहीं मर सकता, मुकर्रर शुदा वक्त लिखा हुआ है, दुनिया की चाहत वालों को हम दुनिया दे देते हैं और आखरत का सवाब चाहने वालों को हम वो भी दे देंगे और एहसान मानने वालों को हम बहुत जल्द नेक बदला देंगे। बहुत से नबियों के हम रेकाब होकर बहुत से अल्लाह वाले जिहाद कर चुके हैं, इन्हें भी अल्लाह की राह में तकलीफें पहुंची, लेकिन ना तो उन्होंने हिम्मत हारी और ना सुस्त रहे और ना दबे। सब्र करने वालों को अल्लाह चाहता है। बस ये भी एक चेकलिस्ट है अंसारुल्लाह बनने के लिए और जिम्मेदारान कहलाने के लिए। हकीकत यह है कि जितना ज्यादा कोई शख्स अपनी जाती इस्लाह का हरीस हो, अल्लाह के पैगाम पे उसकी नजर हो, वो उतना ही ज्यादा जमता है। और ये नबियों के साथियों की बातें हैं अगर, तो फिर आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बेहतरीन नबी थे, तो उनकी उम्मत का तो क्या ही मुकाम होगा। सिर्फ थोड़ी सी नफ्स पे चोट खाने की देर है और फिर उनकी खूबसूरत दुआएं। और उससे पहले जरा सा एक मैप देख लीजिए। जिक्र हुआ मिशने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो सवाल पैदा होता है कि ये क्या है। नंबर एक, तौहीद का प्रचार। लियुज़हिरहुल्दीन कुल्ली हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहुल्दीन कुल्ली। अल्लाह के नबी सल्लम का दुनिया में भेजा जाना, उसके पीछे एजेंडा क्या था? कि दुनिया में तौहीद आम हो। वो जिसको किसी शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में भी कहा कि वक्ते फुर्सत कहाँ, काम अभी बाकी है। दुनिया में नूरे तौहीद का इतमाम अभी बाकी है। और ये सफा पहाड़ी से शुरू हुई थी दावत कि लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून और अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक ये मिशन जारी है। रिसालत खत्म हो गई, रिसालत के काम अभी बाकी हैं जो ये उम्मत वसत करेगी और कर रही है। और फिरकों वारियत में पड़ने की बजाय लोगों को अल्लाह से जोड़ने वाली। दूसरा इसका रंग क्या था? कि लोगों को रब से जोड़ना और जहन्नुम से बचाना। एक एक जुमले पे आप भी अपने लिए कुछ गोल बनाइए कि मैंने भी यही करना है इंशाल्लाह। आयतों की तालीम और इल्मे हिकमत की बातें करना। दो से जायद बार यह आयत कुरान में है मुख्तलिफ अंदाज से। दो जगह तो बिल्कुल क्लियर है कि लोगों को तालीम दीजिए, इल्म दीजिए, ये पूरा एजेंडा है और इस पे पूरे पूरे दर्स मौजूद हैं। करने के काम आज के दौर के क्या हैं? लोगों को इल्म दीजिए, कुरान सुन्नत के रियल रिसोर्सेज से जुड़िए, जोड़िए, तस्किया कीजिए। पढ़ाने के दौरान सिर्फ पूरा नहीं करना, सिर्फ तर्जमे पे गौर नहीं करना, उसमें से अमल की बातें भी लेनी है। और उसके बाद हिकमत की बातें हदीस के साथ लेते जाइए। इसके बाद वो गिरोह तैयार हो जाएगा जो दुनिया में इस मिशन को लेकर निकलेगा और कुन तुम खैर उम्मतिन का टाइटल उन्हीं को मिलेगा इंशाल्लाह। फिर अगली इस मिशन की कड़ी क्या है? कि लोगों को अल खैर की तरफ बुलाना। अल्लाह अकबर। और अल खैर हुवल कुरान सुन्ना। फिर इसी तरह तस्किया नफ्स किया जाए। तस्किया ड्यू लेक्शन है, लिख लीजिए, दो रुखा अमल है। नेकियों को बढ़ाना, गुनाहों को हटाना। किसान और माली का काम जो होता है वो देखिए कि वो बीज भी डालता है, पौधे भी लगाता है, फूल भी लगाता है और जड़ी बूटियां भी निकालता है। नेकियां करना आसान है, गुनाह छोड़ना मुश्किल है। ये भी जम है। आप 10 नेकियां कर लेंगे, एक चीज जो नफ्स की कह लीजिए कि चाहत पे करते हैं उसको छोड़ना मुश्किल है। मतलब आप किसी से कहें ना कि सलातो तस्बी पढ़े, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी बात है, जरूर पढ़नी है, जुम्मा भी हो और रमजान हो, फिर तौरी अच्छा है। 10 नफिल ना पढ़ लें, दो 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 करके पढ़ लेंगे। आप कहते हैं सिगरेट छोड़ दे, बस एकदम परेशान, और इससे ऊपर की चीजें छोड़ना तो और भी मुश्किल होगा। मिसाल सिर्फ इसलिए दी है, गीबत छोड़ दीजिए, ये आप जरा ताने देना छोड़ दें। तो याद रखिए कि लोगों को अपने गुनाह बड़े प्यारे लगते हैं, एडिक्टेड होते हैं लोग। तज़किया नफ्स में दोनों ही चीज़ें होंगी, अच्छाइयाँ भी लाएंगे, बुराइयाँ भी लाएंगे। और याद रखिए, बहुत सारे लोग आज वो हैं जो माशाल्लाह कुरान से जुड़ने के बाद बहुत सारी नेकियां करने लग गए। नमाज रोजे की भी आदत पड़ गई लेकिन गुनाह नहीं अभी छूट रहे। तो उसका तरीका क्या? सुनते ही रहिए। जैसे आप रगड़ते रहे एक बर्तन को जो काला हो गया, रगड़ाई करते रहे, धोते रहे, धोते रहे, एक दिन आपका दिल चमकेगा। घबराए नहीं, जो न्यू कमर्स हैं वो घबराए नहीं। हाँ, जो पुराने लोग हैं वो परेशान हो, वो अपने मुहासबे करें कि अभी भी नहीं मंजी, कितने सख्त दाग है मेरे ऊपर कि मेरी खामियां दूर ही नहीं हो रही। फिर इसी तरह शिर्क और हर किस्म के कबीरा गुनाहों से पाक मुआशरे का क्याम। अल्लाह ताला हमें वो वक्त दिखाए کہ جب ہمارے اپنے معاشرے اس قسم کے ہو چکے ہوں. اور سب سے بڑھ کر دین اسلام کے نفاذ کے لیے ہر قسم کی جہاد, یعنی ہر قسم کی جد و جہد, یعنی جہاد, کوشش اور قربانیاں اس میں حصہ ڈال جائیے. نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی, ورنہ آپ کوٹھیاں, بنگلے, گاڑیاں, بچوں کے نام چھوڑ بھی جائیں, ہو سکتا ہے بھائی بہن ہی آپس میں لڑ لڑ کے اختلافات اور نااتفاقیوں کا شکار بن جائے. کچھ مرد ساری زندگی کماتے رہتے ہیں, خود اتنا انجوائے بھی نہیں کرتے, کہتے ہیں بچوں کے لیے کچھ چھوڑ دیں. تو بچوں کے لیے جو چھوڑنا ہے وہ بچوں پہ لگا دیجئے. ایک شادی پہ جو بچوں کے ہم خرچ کرتے ہیں نا, اس کا آدھا بھی اگر ان کی تعلیم اور تربیت پہ لگا دیں تو ہماری قبر میں انشاءاللہ ٹھنڈی ہوا آئے گی. تو اللہ کے نبیوں کے ساتھیوں کی دعاؤں میں سے بڑی پیاری دعا کیا تھی, وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. وہ یہی کہتے رہے کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہو جاتی ہے اسے بھی معاف فرما, اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما, اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے. آمین تو کہیے. انہوں نے دعا مانگی, فاتاہم اللہ ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخرہ. اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دعائیں مانگنے والا اور پھر اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول بھی فرما لے. آج کے دور کے مسلمانوں کو یہ ساری دعائیں مانگنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی سستی کو دور کروا سکیں. یا ایھا الذین آمنو, ایک اور پکار آسمان سے, لانگ ڈسٹینس کال. اے ایمان والو, اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے, یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے. پھر تم نامراد ہو جاؤ گے, بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے. ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے. اب دوبارہ میدان احد میں لے جایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے, یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی. اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی, تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا, تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے, اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرمایا. اور اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. دیکھیے ناچاکی کا چھوٹا سا منظر ہے اس نائتوں میں, اور اس نے کتنا بڑا نقصان دلایا. چند ذمہ داروں کی غلطی بہت سارے لوگوں کو نقصان دیتی ہے. صحابہ کرام کی تو اجتہادی خطا تھی ہی, لیکن آج امت کے لوگ اگر جانتے بوجھتے کچھ ایسے ہی کام کریں تو یاد رکھے گا کیسے لوگ پھر ذمہ دار ہیں امت کی ہلاکت کا, اور امت کے اوپر جو مشکلات پڑتی ہیں ان کا. میدان احد میں جو بھگدڑ مچی اس کا ایک منظر, ایسے لگتا ہے ان آیتوں کو پڑھ کر جیسے آنکھوں دیکھا منظر. اس تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم, جب کہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ کے رسول تمہیں پیچھے سے آواز دے رہے تھے, بس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے. یہ بھی ہیلنگ پروسیس ہے اللہ تعالیٰ کا. ایک غم کے بعد جب اس سے بڑا غم آ جاتا ہے نا تو پچھلا غم بھول جاتا ہے. غزوہ احد میں مسلمانوں کو مستقل مشکلات پڑی تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں اس کی حکمت بتا دی کہ کبھی کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جیسے کسی کو نچوڑا جائے, تو ان غموں کے بعد بڑی خیر ہوتی ہے. آج کل کے بھی حالات کے بعد جو خیر آنے والی ہے اس کو دیکھ کر انشاءاللہ بہت سارے لوگ مانیں گے کہ یہ وقتی طور پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی اس نے بعد میں انسانوں کو کتنی بڑی خیر دی, اور ضرورت تھی اس کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ الحکیم بھی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے. اور واقعی بھگدڑ تو مچی, لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا, फिर इसने इस गम के बाद तुम पर अमन नाजिल फरमाया और तुम में से एक जमात को अमन की नींद आने लगी। हाँ, कुछ वो लोग भी थे कि इन्हें अपनी जानों की पड़ी हुई थी, वो अल्लाह ताला के साथ नाहक जहालत भरी बदगुमानियां कर रहे थे और कहते थे कि हमें भी किसी चीज का इख्तियार है। कह दीजिए, काम कुल का कुल अल्लाह के इख्तियार में है। ये लोग अपने दिलों के भेद आपको नहीं बताते, कहते हैं कि हमें कुछ भी इख्तियार होता तो यहाँ कत्ल ना किए जाते। आप कह दीजिए, गो तुम अपने घरों में भी होते, फिर भी जिनकी किस्मत में कत्ल होना था वो तो मक्तल की तरफ चल खड़े होते। अल्लाह ताला को तुम्हारे सीनों के अंदर की चीज का आजमाना और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है इसको पाक करना था, और अल्लाह ताला सीनों के भेद से आगाह है। काश का लफ्ज मत बोलिए, हदीस की रोशनी में ये लफ्ज शैतान का दरवाजा खोल देता है। जो होना था हो गया, पिछली जिंदगी की बातों को भूल जाइए। काश कहने वालों के दिल के अंदर हमेशा एक अंगारा ही जलता रहता है और वो अल्लाह की तकदीर पे राजी नहीं होते। तुम में से जिन लोगों ने उस दिन पीठ दिखाई जिस दिन दोनों जमातों की मुठभेड़ हुई, ये लोग अपने बाज करतूतों के बाद शैतान के फिसलाने पर आ गए। लेकिन यकीन जानो कि अल्लाह ताला ने इन्हें माफ कर दिया। अल्लाह ताला बख्शने वाला और तहम्मुल वाला है। अल्लाह ने इतने प्यारे लोगों की कितनी बातों को माफ कर दिया। याद रखिए, अल्लाह ताला की सुन्नत है वो अपने रास्ते में काम करने वालों की गलतियों को भी प्यार से देखता है। काम करने वाले गलती भी करें तो ये उनसे बहुत प्यारे हैं जो काम नहीं कर रहे, और गलती कौन करेगा जो काम करेगा। आप अपनी मेट से कहते हैं, तुम इतने बर्तन तोड़ती हो, मेरे से तो कोई नहीं टूटा। अगर जरा सी जरूरत वाली हो तो कहेगी, बाजी आखिरी दफा बर्तन कब धोए थे। बस तो एक बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन उस वक्त होता है दीन का काम करने वालों का जब उनकी किसी गलती या कह लीजिए कि कमी बेशी या सुस्ती या मिसअंडरस्टैंडिंग से नुकसान हो जाए तो दिल टूटने लगता है। तो ये उन लोगों के लिए कोई बात नहीं, आप भी प्यारे, आपका काम भी प्यारा, आपकी गलतियां तो और भी प्यारी, क्योंकि इसके बाद आप सबक सीख लेंगे और आइंदा वो काम नहीं करेंगे। तो जिंदगी में कभी डिमोटिवेटेड होने लगे तो अपने अच्छे कामों को देखें, इससे इंशाल्लाह ताला आपके अंदर बहुत ही खैर आएगी। एक सीरीज है, सर उठाकर चलो या सर उठाकर देखो, ऐप पे तो मैंने खुद भी देखी है, बुक्स की कैटेगरी के अंदर, वो ऐसे ही लोगों के लिए है। सेल्फ मोटिवेशन और ख़ास तौर पे करेक्टर बिल्डिंग हर फील्ड ऑफ लाइफ के लोगों को फ़ायदा देगी। कोई वो रिलीजियस प्रॉस्पेक्टस नहीं, बल्कि हर तरह के हालात में कैसी पर्सनैलिटी चाहिए वो उसके ऊपर है। अल्लाह करे कि हमारी ज़ात की कमी बेशियां दुनिया में दूर हो जाएं और हम फिर उसको दूर कर लें। फिर आगे फरमाया, ईमान वालों, तुम इन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने कुफर किया अपने भाइयों के हक में जबकि वो सफर में हो या जिहाद में। कहा, अगर हमारे पास होते ना मरते और ना मारे जाते। इसकी वजह ये थी कि इस ख्याल को अल्लाह ताला इनकी दिली हसरत का सबब बना दिया। इस ख्याल को अल्लाह ताला ने इनकी दिली हसरत का सबब बना दिया। इस ख्याल को अल्लाह ताला इनकी दिली हसरत का सबब बना दे। अल्लाह ताला जिलाता है और मारता है, और अल्लाह ताला तुम्हारे अमल को देख रहा है। क्या पता चला कि अल्लाह ताला के हाथ में है जिंदगी और मौत, किसी के भी हाथ में नहीं उसके सिवा। और आगे फिर एक ऐसी जिंदगी की बात है कि जिसको सामने रख लें तो बात बड़ी बनती है खूबसूरत, और हकीकत यह है कि अल्लाह का कलाम है ही ऐसा। और वो ज़रूरत क्या है इस बात को समझने और करने की, ज़रा सा इस आयत को पीछे से दोबारा कंटिन्यू कीजिएगा, 157 बैक पे चलिए। बल्कि इसमें आपके मेरे लिए क्या है, वलैन को तिल तुम फी सबीलिल्लाहि अव मुत्तुम लमग़फिरतुम मिनल्लाहि व रहमा व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमाउन। कसम है, अगर अल्लाह ताला की राह में शहीद किए जाओ या अपनी मौत मरो तो बेशक अल्लाह ताला की बख्शिश और रहमत इससे बेहतर है जिसे ये जमा कर रहे हैं। अमूमन लोग क्या चीज़ें जमा करते हैं, मनपसंद चीज़ें। इन सब से प्यारी अल्लाह के रास्ते की जिद्दोजहद है, यही पैगाम है इस आयत का। वलई मुत तुम औ कुतिल तुम ला इलाहा इल्लल्लाह तुहशरून। कसम है अगर अल्लाह ताला की राह में शहीद किए जाओ या अपनी मौत मरो तो बेशक अल्लाह ताला की बख्शिश और रहमत इससे बेहतर है जिसे ये जमा कर रहे हैं। बिल यकीन ख्वाह तुम मर जाओ या मार डाले जाओ, जमा तो अल्लाह ताला ही की तरफ किए जाओगे। क्या पता चला? एक माइंड मैप देखिएगा, मौत का वक्त ही नहीं जगह भी तय है। लिखिए, पूछिए खुद से, मुझे पता कहाँ मरूंगी, क्या दिन होगा, रात होगी कि सुबह। कभी कभी मौत की बातें करनी चाहिए, दिल नरम होता, दिल पे लगा हुआ जंग धुल जाता है। तो दुनियावी जिंदगी सिर्फ धोखे का सामान है, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। आज के हालात में कोरोना वायरस का खौफ एक फितना है, वरना आज भी इससे ज्यादा लोग मरते होंगे बीमारियों में और हादसात में और दूसरी चीजों में। मौत के वकूअ और तारीख होने में कोई इख्तलाफ नहीं। अगर कोई बच सकता दुनिया में तो फिर वो बचते कि जिनकी इंसानियत को हमेशा जरूरत है। फबीमा रहमत मिनल्लाहिलिन्तलहुम, यहां से प्यारे नबी के प्यारे खसाइस, लीडरशिप क्वालिटीज और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खूबसूरत किरदार, खास तौर पे सहाबा के साथ जो ताल्लुक थे, तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी कि जो आज भी काम करने वालों और कराने वालों के बीच में होनी चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत के बायस आप इन पर रहम दिल हैं, और अगर आप बदजुबान और सख्त दिल होते तो ये सब आपके पास से छट जाते। सो आप इनसे दरगुजर करें और इनके लिए इस्तिग़फ़ार करें और काम का मशवरा इनसे किया करें। फिर जब आपका पुख्ता इरादा हो जाए तो अल्लाह ताला पर भरोसा करें, बेशक अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है। ये थी वो खूबियाँ जिसकी वजह से इस्लाम फैला। एक मिस अंडरस्टूड करने वाला पॉइंट दिया जाता है कि अल्लाह के नबी ने तलवार के जरिए से दीन फैलाया। इस आयत के ऊपर ये ले लीजिए कि आपने अखलाक के जरिए से दीन फैलाया। जुबान शीरी मुल्क गिरी, आपको अल्लाह ताला ने फितरी तौर पे नरम मिजाज बनाया था, और फिर जब जुबान भी नरम हो जाए और साथियों से प्यार मोहब्बत भी हो और फिर मशवरे भी हों सलाह भी हो, तो हकीकत है कि खून के रिश्तों की जगह पे साथ आ जाते हैं वो रिश्ते जो साथ काम करते हैं। अच्छा अखलाक रखने वालों को हमेशा लोग पसंद करेंगे। और अगर आप अपनी बड़ाई के नशे में, और मुझे तो लीडर बना दिया और मैं तो बड़ी और मेरे जैसा तो कौन, तो याद रखिए लोग आपके पास भी नहीं पटकेंगे। आज कभी कभी ये भी एक बात फितना बन जाती है कुछ लोगों के लिए, और वो क्या है कि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। ज़रा सा उनको कोई इख्तियार दे दीजिए, वो दूसरों को सॉरी कुछ इख्तियार दे दीजिए, फिर देखिए वो क्या कुछ करते हैं। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि आजिज़ी मिले। नरमी बहुत प्यारी चीज़ है। नरमी किस में? ज़ुबान में, असूलों में नहीं। आगे ये मौजू पढ़ते जाएंगे, और अगर आप चाहें तो इन आयतों की डिटेल की तफसीर सुन लीजिए, लिंक डाल दीजिए इसी की डिटेल का वेब पेज पे, ताकि कोई साथी लेना चाहे, और ख़ास तौर पे वो लोग जो दीन का काम कर रहे हैं उनको बहुत ज़रूरत है। आप देखिए कि अल्लाह के नबी के सबसे करीब रहने वालों में से अबू बकर थे, उनकी नरमी को मिसाल ले लीजिए, कितने नरम मिजाज थे। हर मौके पे उनकी राय नरमी वाली होती थी। आपकी खिलाफत के दौर का एक वाक्य बयान किया जाता है कि सुबह की नमाज के बाद फौरन मदीना से निकलते, मज़ाफ़ात यानी सबब्स के इलाकों में कहीं चले जाते, किसी को नहीं बताते क्या करता हूँ। तो वो लोग तो एक दूसरे की नेकियों को देखना चाहते थे। हज़रत उमर को एक दिन तजस्सुस हुआ, पीछे चल पड़े, देखा कि एक छोटा सा घर है, तो अबू बकर सिद्दीक उसमें चले गए, ये साइड पे हो गए। अबू बकर सिद्दीक थोड़ी देर के बाद वहाँ से निकल कर वापस चले गए, उमर घर में चले गए, देखा तो एक बुढ़िया है जो देख नहीं पाती। कहा भी कौन आया था? कहने लगी मुझे तो नहीं पता। कहा कब आता है? कहती रोज आते हैं। क्या करते हैं? मेरे घर की सफाई सुथराई करके पानी भर के खाना पका के रख जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक की खूबियां उस औरत ने भी जान ली जिसकी निगाहें नहीं थी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उन्होंने जब ये बात सुनी तो कहने लगे कि अबू बकर के सीने पर जितने बाल हैं मैं तो उतनी नेकियां भी नहीं कर सकता, कहाँ कि मैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु जैसी पूरी नेकियां करूं। तो एक जुमला ले लीजिए, इल्म के साथ हिल्म लाइए। जब इल्म के साथ हिल्म नहीं होता ना, तो तकबर और रौनत और हुक्मी अंदाज शुरू होता है, जो इन चार्जेस को अच्छा नहीं लगता। तो अपने साथियों को, अगर आप भी कोई दीन का काम करते हैं, तो इस चीज़ की नसीहत कीजिए कि दूसरे लोग तो पहले ही टूटे होते हैं, वो तो पहले एहसास कमतरी और महरूमी का शिकार होते हैं, फिर अगर आप उनको और भी अंदाज ऐसे रखें तो फिर वही बात है कि सख्त हाथों से इंजेक्शन लगवाने वाली बात है। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो इसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। ईमान वालों को अल्लाह ताला पर ही भरोसा रखना चाहिए, यकीन कर लीजिए इस बात का, सारी मदद सिर्फ अल्लाह की है, भरोसा उसी पर रखिए। नामुमकिन है कि नबी से खयानत हो जाए, हर खयानत करने वाला खयानत को लिए हुए क़यामत के दिन हाजिर होगा, फिर हर शख्स अपने अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और वो जुल्म ना किए जाएंगे। इब्ने माजा की रिवायत 4284, अबू सईद अल-खुदरी से ये रिवायत हम तक पहुंची। क़यामत के दिन एक नबी आएगा और इसके साथ दो ही आदमी होंगे, और एक नबी आएगा और इसके साथ तीन आदमी होंगे, और किसी नबी के साथ ज्यादा लोग होंगे, किसी के साथ कम। इस नबी से पूछा जाएगा, क्या तुमने अपनी कौम तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया था? वो कहेगा, जी हाँ। फिर इसकी कौम बुलाई जाएगी और पूछा जाएगा, क्या इसने तुमको अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था? वो कहेंगे, नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाएगा, तुम्हारा गवाह कौन है? वो कहेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत। फिर आपकी उम्मत बुलाई जाएगी और इनसे कहा जाएगा, क्या इसने अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया था? वो कहेगी, जी हाँ। इससे पूछा जाएगा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जवाब देगी कि हमारे नबी ने हमको ये बताया कि रसूलों ने पैगाम पहुंचा दिया है, तो हमने इनकी तस्दीक की। फिर आपने फरमाया, यही अल्लाह ताला के कौल, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। इसी तरह हमने तुमको उम्मत वसत बनाया ताकि तुम गवाह रहो लोगों पर और रसूल गवाह रहे तुम्हारे ऊपर। सूरत बकरा की 143 आयत जो पढ़ चुके, इसका यही मतलब है। तो क्या पता चला अभी तक की बात का खुलासा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत बाकी लोगों ने बहुत सारी बातें सही और फिर दीन पहुंचाया, हत्ता कि आपके ऊपर खयानत का एक इल्ज़ाम लग गया, तो उसका जिक्र अल्लाह ताला ने नायात में फरमा दिया। दुआ कीजिए कि हम अपनी जात से ऊपर उठकर दीन का काम करें। कुछ लोग दीन का काम करते हैं लेकिन जरा सी उन पर कोई बात आ जाए, जरा सी तनकीदी कोई क्यों ना करे, छोड़ देते हैं, कहते हैं फिर आप खुद कर लें, हमसे नहीं होता, हम नहीं कर सकते। जरा उनकी राय मर्जी के खिलाफ कोई बात होगी, छोड़ देंगे। बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि अल्लाह को मेरी भी जरूरत नहीं और उसको किसी एक बंदे, क्या किसी जिन, किसी फरिश्ते की भी जरूरत नहीं, वो अपने दीन के काम खुद करवा सकता है। तो फिर कौन बचेगा, किसका काम सिक्योर होगा? अफ़मन तबा रिदवान अल्लाह, क्या बस वो शख्स जो अल्लाह ताला की खुशनुदी के दर पे है इस शख्स जैसा है जो अल्लाह ताला की नाराजगी लेकर लौटता है, और जिसकी जगह जहन्नुम है जो बदतरीन जगह है? तो अल्लाह हमें अपनी रजा के लिए काम करने वाला बना दे। अल्लाह ताला के पास इनके अलग अलग दर्जे हैं और इनके तमाम आमाल को अल्लाह ताला बखूबी देख रहा है। बेशक मुसलमानों पर अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि इन्हीं में से एक रसूल इनमें भेजा जो इन्हें इसकी आयतें पढ़कर सुनाता है और इन्हें पाक करता है और उन्हें किताब व हिकमत सिखाता है। यकीनन ये सब इससे पहले खुली गुमराही में थे। 164 आयत हकीकत में इस बात की दलील है कि आप एक नबी और एक रसूल होने के साथ साथ एक मुअल्लिम भी थे, एक उस्ताद भी थे, और अल्लाह के नबी की इस शान को अल्लाह ने मन अल्लाहु कहकर पुकारा। हाईलाइट कीजिए कितनी नेमतें कुरान पाक में मजकूर हैं जो अल्लाह ने इंसानों को दी, लेकिन सिर्फ इस नेमत को यहाँ मेंशन किया। वाहिद मुकाम है कुरान पाक का, तो कहिए कि अल्लाह के नबी का मिल जाना और एक अच्छे उस्ताद के रूप में मिल जाना, ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला हमें आपसे बेहतरीन फायदे उठाने वाला बनाए। फिर एक माइंड मैप देखिएगा कि क्या काम था आपका, तिलावत, क्योंकि तिलावत के साथ ही तालीम मुमकिन होती है। आप सही आयतें पढ़ ही नहीं सकते तो आप उसकी तफहीम कैसे सही करेंगे? फिर दूसरी चीज़ है तज़किया। तज़किये से मुराद है अकायद और आमाल और अखलाक की इसलाह, और फिर तालीम है किताब व हिकमत, और हिकमत से मुराद अक्सर मुफस्सरीन के नज़दीक हदीस है। तो नबूवत के तीन अहम मकासद यही थे। अल्लाह करे कि आज भी हमारे दीन सीखने सिखाने के यही मोटिव हों, और अल्लाह ताला ना इत्तफाकियों के फितनों से बचाकर आज भी इसी काम को करने की सबको तौफीक अता फरमाए। फिर दोबारा उहद की तरफ इशारे चलते हैं। अवलम्मा साबत को मुसीबा, आप देख रहे हैं कि कुरान का अंदाज ना तो टेक्निकल है कि बस आप टेक्निकल टर्म्स पढ़ें, ना लॉ की तरह है कि बस मुकदमे पेश हो रहे हैं, कहीं दिल सोजी है, कहीं हकायक है, यानी जिसको कहते हैं लर्न एंड टेक मॉरल्स, स्टोरी टेलिंग और मॉरल्स के साथ, और ये बच्चों को सिखाने के लिए खास तौर पे बहुत प्यारा अंदाज होता है। क्या बात है, जब तुम्हें एक ऐसी तकलीफ पहुंची, तुम इस जैसी दो चंद यानी दुगनी पहुंचा चुके थे, तो ये कहने लगे ये कहाँ से आ गई, आप कह दीजिए ये खुद तुम्हारी तरफ से है, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। साथियों को गलतियों पर इस तरह भी सिखाया जा सकता है। तुम्हें जो कुछ उस दिन पहुंचा जिस दिन दो जमातों की मुठभेड़ हुई थी, वो सब अल्लाह के हुक्म से था, इसलिए ताकि अल्लाह ताला ईमान वालों को जाहरी तौर पर जान ले और मुनाफिकों को भी मालूम कर ले, जिनसे कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में जिहाद करो या काफिरों को हटाओ, तो वो कहने लगे अगर हम लड़ाई जानते होते तो जरूर साथ देते। वो इस दिन बनिस्बत ईमान के कुफर के बहुत नजदीक थे। अपने मुंह से वो बातें बनाते हैं जो इनके दिलों में नहीं, और अल्लाह ताला खूब जानता है जिसे वो छुपाते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद भी बैठे रहे और अपने भाइयों के बारे में कहा कि अगर वो भी हमारी बात मान लेते तो कत्ल ना किए जाते। कह दीजिए अगर तुम सच्चे हो तो अपनी जानों से मौत को हटा दो, यानी जब इंसान खुद कोई काम नहीं करता ना, तो फिर ना चाहते हुए भी उसका दिल करता है दूसरे भी छोड़ दें, वो भी ना करें, ताकि किसी को हमारा काम करना ना दिखे। तो आप देखिए साथ साथ सच्चे मोमिनों यानी सहाबा कराम का जिक्र चल रहा है, और साथ ही साथ खोटे लोगों की भी बात है कि अगर मौत सिर्फ मैदान जंग में ही आती है तो फिर जरा मौत को हटाकर दिखाओ, और तुम जिसको मौत कहते हो वो मौत नहीं बल्कि वो जिंदगी है। दूसरा मौका है कि जहाँ ये मजमून आ रहा है पीछे सूरह बकरा में गुजर गया, अब यहाँ दोबारा वही बात खूबसूरत लफ्जों में कि शहादतें हक की गवाहियां देते हुए अगर किसी की जान भी चली जाती है तो वो मौत नहीं वो जिंदगी है। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाही अमवाता, जो लोग अल्लाह ताला की राह में शहीद किए गए इनको हरगिज मुर्दा ना समझें बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास रोजियां दिए जाते हैं। देखिए रब के पास जिंदा हैं, आज दुनिया से चले गए। बास लोग इस आयत को कोट करके कहते हैं शहीदों से मांगो, नहीं, शहीद की बीवी बेवा हो गई, उसके बच्चे यतीम हो गए, तो ये जिंदगी तो वो है जिसके लिए अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि तुम इसका इदराक भी नहीं करते। अल्लाह ताला ने फजल जो इन्हें दे रखा है इससे वो बहुत खुश हैं और खुशियां मना रहे हैं। इन लोगों के बारे में जो अब तक इनको नहीं मिले इनके पीछे हैं, इस पर इन्हें ना कोई खौफ है ना वो गमगीन होंगे, वो खुश होते हैं कि अल्लाह की नेमत और फजल से, और इससे भी कि अल्लाह ताला ईमान वालों के अजर को बर्बाद नहीं करता। शुहदा के लिए नाम है, याद रखिए अल्लाह के रास्ते में गवाहियां देते देते किसी दिन जान भी चली जाए तो इस पे खुश हो, क्योंकि शहीद सीधा जन्नत में जाता है, डायरेक्ट फ्लाइट है उसकी, और खास तौर पे जब दीन का काम करने की हिम्मत ना हो रही हो तो तब इस चीज को याद रखिए कि क्या होगा, सेहत खराब हो जाएगी तो वो तो वैसे भी होनी है, वजन बढ़ जाएगा, बैठ बैठ के अब सारा दिन पढ़ते ही रहें पढ़ाते ही रहें काम ही करते रहें, तो एक्स्ट्रा टाइम में थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए, क्योंकि शैतान चोर दरवाजों से आता है और हमें दूसरी तरफ ले जाता है। तो जो शुहदा के लिए नामात हैं ये एक माइंड मैप है, उसमें पहली बात यह है कि शहीद मुर्दा नहीं जिंदा है, शहीद के लिए जन्नत की जमानत है, शुहदा अम्बिया सिद्दीकीन और सालेहीन के साथ होंगे, क्या खूबसूरत कंपनी होगी, अगले पारे में ही देखेंगे इंशाल्लाह। शोहदा को अल्लाह के यहाँ रिस्क दिया जाता है, शहीद को रोजे कयामत घबराहट नहीं होगी, और दुनिया और आखरत में सुर्ख रू होंगे। अल्लाह ताला हमें ये शौक तो लगा दे, जिसको शौक होगा ना, ख्वाहिश होगी, तो अल्लाह ताला उसकी मौत को शहादत की मौत बना देगा। अब एक अजीब से गिरोह का जिक्र है, जख्मी हैं घर में, घर घर में शुहदा हैं, और गम भी है चोट भी है, अभी ओहद की तकलीफ और थकन दूर नहीं हुई, एक और जंग की कॉल आ गई। हमरा उल असद की कहानी है, यहाँ तर्जमा सुन लीजिए, इसकी तफसीर बाद में सुन लें और अपने लिए अमल ले लीजिए। दीन का काम अनथक करना है, कंटिन्यूस काम है। देखिए इस काम का सबसे बस मुश्किल पहलू ही यह है कि इट्स कंटिन्यूस, नो ब्रेक इन बिटवीन, क्योंकि ब्रेक इसके करने में मिलती है, थकन तो इधर होती कोई नहीं, और लालच लग जाता है कि और भी नहीं, कि इसमें भी मेरा हिस्सा, इसमें भी मेरा हिस्सा। साहबा को ये बात समझ आ गई थी, हम समझते हैं, आइए इनकी कहानी सुनते हैं। अल्लसी नस्तजाबु लिल्लाहि व रसूलि मिन बादि मा साबहुमुल कर्ह। जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल के हुक्म को कबूल किया इसके बाद कि इन्हें पूरे जख्म लग चुके थे, इनमें से जिन्होंने नेकी की और परहेजकारी बरती, इनके लिए बहुत ज्यादा अजर है। वो लोग जब इनसे, लोगों ने कहा कि काफिरों ने तुम्हारे मुकाबले में लश्कर जमा कर लिए हैं, तुम इनसे खौफ खाओ, तो इस बात ने इन्हें ईमान में और बढ़ा दिया और कहने लगे, हसबुनल्लाहु व नियमल वकील, हमें अल्लाह काफी है और वो बहुत अच्छा है कारसाज। लिखिएगा एक जुमला, मुश्किल हालात में ईमान का पौधा ज्यादा तेजी से बढ़ता है। मोमिन एडवर्स कंडीशंस में, फितनों के दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में ज्यादा काम करता है। ये पूरे यकीन के साथ कहूंगी, शायद को सामने रखकर। शर्त एक है कि हसबुनल्लाहु नियमल वकील पढ़ते रहे। जब आपको अपनी जिम्मेदारी अदा करना मुश्किल लगे, अपनी असल जिम्मेदारी छोड़ के दूसरी चीजों में खोना आसान लगे, जब वो फर्ज छोड़कर नफिलों में पहुंच जाए, तो ये कलमा कसरत से पढ़िए, क्योंकि यही कलमा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग में डाले जाने के वक्त भी पढ़ा था, और इसी तरह से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी। ज़रूरत यह है कि अल्लाह पे नज़रें रखी जाएं, जितना कोशिश करेंगे अल्लाह ताला आपके लिए उतना ही आसान करेगा। क्या मिला ये कलमा पढ़ने से? नतीजा ये हुआ कि अल्लाह की नेमत और फजल के साथ ये लौटे, इन्हें कोई बुराई नहीं पहुंची, उन्होंने अल्लाह ताला की रजामंदी की पैरवी की। अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। ये खबर देने वाला शैतान ही है जो अपने दोस्तों से डराता है, तुम इन काफिरों से ना डरो और मेरा खौफ रखो अगर तुम मोमिन हो। तो ये मॉरल था इस स्टोरी का। सहाबा को क्या चीज मोटिवेट करती थी? ईमान, अपना ईमान। देखिए, अपने कदमों पे खड़े होंगे ना फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरों को देखकर आगे बढ़ना और दूसरा गिरे तो आप भी गिर जाएं, तो ये तो बड़ा खतरा है, क्योंकि हमेशा तो हम दूसरों के साथ नहीं रहेंगे। कहते ना कि मुझे सहारा समझने वालों, अगर मैं लड़खड़ाया तो किधर जाओगे। इसके बाद दोबारा दूसरे गिरोह की बातें हैं। कुफर में आगे बढ़ने वाले लोग तुझे गमनाक ना करें, यकीन मानो ये अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह ताला का इरादा है कि इनके लिए आखरत का कोई हिस्सा अता ना करे, और इनके लिए बड़ा अजाब है। तो इस आयत से आपको भी तसल्ली मिलनी चाहिए। अगर कहीं कोई साजिश है, कोई बात है, कोई प्रोपेगंडा है, तो यकीन कीजिए कि अल्लाह जिसका हो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, जिसे रब रखे उसे कौन चखे। कुफर को ईमान के बदले खरीदने वाले हरगिज हरगिज अल्लाह ताला को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और इन्हीं के लिए सख्त तलब नाक अजाब है। काफिर लोग हमारी दी हुई मोहलत को अपने हक में बेहतर न समझें। ये मोहलत तो इसलिए है कि वो गुनाहों में और बढ़ जाएं, और इन्हीं के लिए जलील करने वाला अजाब है। नोट कीजिएगा इसको। देखिए कि छोटी सी एक मिसाल दे देती हूँ, ताकि आपके मेरे लिए ये चीज समझनी आसान हो जाए, कि बाद जब इंसान पहले ही गुनाह करता है तो पकड़ा जाता है, फिर बाद में कहता है लो। जैसे वो किसी अफसर की बात किसी ने कही, मैंने तो पहली दफा रिश्वत ली और पे पकड़ा गया, लोग तो इतनी लेते हैं। तो दूसरे ने कहा कि शुक्र करो तुम पहली दफा पकड़ गए हो, क्योंकि जब बंदा पहली गलती पे पकड़ा जाता है ना, तो दूसरी बार तौबा करता है, कहता है मैं कानों को हाथ लगाता हूँ, मैं नहीं करूंगा ये काम, तो ये उसके हक में रहमत हो जाती है। इसके बरक्स दूसरी तरफ जो है वो भी आप जानते हैं। अब होता क्या है, इसको एक मिसाल से समझाना चाहती हूँ। दुनिया में जब इंसान गलत काम करता है, यानी अल्लाह की हदों को पार करता है और पकड़ा नहीं जाता, जैसे हर तरह के लोगों में मुख्तलिफ मिसालें हैं, तो वो ये समझ लेता है कि अल्लाह को पता ही नहीं है, या अल्लाह ताला बहुत भोला है, नऊज़ु बिल्लाह। बस आप देखिए कि एक मालिक है, वो एक चार दीवारी खींचता है और गुलाम को कहता है कि तुम इसके अंदर अंदर रह सकते हो, इसे बाहर नहीं जाओगे और इसके किनारे पे ना जाना। गुलाम कहता है ठीक है। अब वो आउट ऑफ क्यूरियसिटी जिस चीज़ से मना करे ना, वो उसी तरफ जाना चाहता है। ये हो सकता है एक ऐसा कमरा हो, उसकी दीवार हो, जिसके पीछे मालिक ने कोई चीज़ रखी है, या ना भी रखी हो, गुलाम को उधर काम नहीं है। एक दिन तजस्सुस के मारे वो उस दीवार के पास चला जाता है, कहता है जरा झांकू तो सही अंदर क्या है, और वो झांकते झांकते अंदर चला ही गया थोड़ा सा। अब खौफ आएगा, ओहो, और हो सकता है कि वो दीवार के दूसरी तरफ चला जाए, परेशान फील, परेशान होगा, लेकिन वापस आ गया। अब डर रहा है, कांप रहा है कि मालिक ने आज मुझे पकड़ लेना है, लेकिन देखता है कि मालिक कुछ नहीं कह रहा। फिर दूसरी दफा ऐसा ही मौका हो गया, तीसरी दफा भी हो गया, क्या सोचेगा, मालिक ने कुछ नहीं कहना, खामो। अब अक्सर ही जाता है वहीं बैठता है, होशियार हो गया ना, और सॉरी फील भी नहीं होती। और एक दिन ऐसा होता है जब साल का हिसाब होता है, मालिक कहते इधर आ, वो मैंने तुझे फलां कमरे में जाने से रोका था ना, और तू 25 दफ़ा गया है इस 2 महीने में, और हर दफ़ा जाने का मैं तुझे नुकसान दूंगा, तेरी पे में से काटूंगा या सजा दूंगा, ये होगा लोगों के साथ। अल्लाह ताला सब देख रहा है, क्योंकि वो असमी है और बसीर है, वो सुनता भी और देखता भी और अलालीम भी है। लेकिन अल्लाह ताला ने शरीयत की बाउंड्रीज की हद खींच दी है आपके मेरे लिए। हम बार बार शरीयत को पामाल करें, इधर से उधर जाएं, अल्लाह कुछ नहीं कहता तो बंदा फिर बेपरवाह होता है कि कुछ नहीं कहना। जैसे बच्चे की माँ उसको ना टोके ना, तो वो भी ज़रा बिगाड़ की तरफ चलने लगता है। तो लिहाजा एक दिन ऐसा होगा कि फिर अल्लाह गुनाहों में बढ़ा कर उसको पकड़ेगा। अल्लाह ताला आपको मुझे शऊर दे दे, जिस हाल में तुम हो इसी पर अल्लाह ताला ईमान वालों को ना छोड़ेगा, जब तक कि पाक और नापाक अलग अलग ना कर दे, और ना अल्लाह ताला ऐसा है कि तुम्हें गैब से आगाह कर दे, बल्कि अल्लाह ताला अपने रसूलों में से जिसका चाहे इंतखाब कर लेता है। इसलिए तुम अल्लाह ताला पर ईमान रखो, अगर तुम ईमान लाओ और तकवा करो तो तुम्हारे लिए बहुत भारी अजर है। जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने फजल से कुछ दे रखा है, वो इसमें अपनी कंजूसी को अपने लिए बेहतर ख्याल ना करें, बल्कि वो इनके लिए बदतर है। अन करीब क़यामत के दिन ये अपनी कंजूसी की चीज़ के तौक डाले जाएंगे। अल्लाह ताला के लिए है क्या, आसमानों और ज़मीन की मीरास अल्लाह ही के लिए है, और जो कुछ तुम कर रहे हो इससे अल्लाह ताला आगाह है। यकीनन अल्लाह ताला ने इन लोगों का कौल भी सुना जिन्होंने कहा कि अल्लाह ताला फकीर है, हम दौलतमंद हैं। इनके इस कौल को हम लिख लेंगे और इनको काम्बिया को कत्ल करना भी, और हम इनसे कहेंगे कि जलाने वाला अजाब चखो। देखिए, जब छोटी छोटी चीज़ों पे पकड़ नहीं होती ना, तो फिर इंसान अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में भी ना जेबा और गैर महज़ब बातें करना शुरू होता है। तो क्या पता चला, आजमाइशें आती हैं, मोमिन पे भी आती हैं, मुनाफिक पे भी। मकसद क्या होता है, आजमाइश मोमिन और मुनाफिक को जुदा कर देती है। कैसे, माइंड मैप है मोमिन के लिए, रिफ़तों की पहली मंजिल आजमाइश। मोमिन गर्दिशे ज़माना के मसाइब और आलाम से नहीं घबराता, इसके बरक्स मुनाफिक अपने अंदर छुपे शैतान की मंद है। दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि मोमिन को आजमाइश में कामयाब होने के बाद बुलंदियाँ मिलती हैं, फिर ज़िंदगी में जब इधर उधर धूप छाँव आती है तो वो घबराता भी नहीं। लेकिन मुनाफिक से इस्लाम पाक को पास हो जाता है, इस्लाम पाक होता है। देखिए, आजमाइशों में दो काम ज़रूर होंगे, या तो इस्लाम में से निफाक वाले लोग निकल जाते हैं, या फिर निफाक वालों के पास जो थोड़ा बहुत इस्लाम होता है वो भी उनसे वापस लिया जाता है कि जॉब मौजें करो। अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश में पूरा उतारे। इसीलिए कुछ लोगों का तذکرہ करने के बाद अल्लाह सुबहाना ताला फरमाते हैं, ज़ालिक बिमा क़द्दमत अईदीकुम, ये तुम्हारे पेश करदा अमाल का बदला है, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि किसी रसूल को ना माने जब तक वो हमारे पास ऐसी कुर्बानी ना लाए जिसे आग खा जाए। आप कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझसे पहले तुम्हारे पास जो रसूल दीगर मोजज़ात के साथ ये भी लाए हैं जिसे तुम देख रहे हो, फिर तुमने इन्हें क्यों मार डाला? फिर भी ये लोग आपको झुटलाएं तो आपसे पहले भी बहुत से वो रसूल झुटलाए गए जो रोशन दलीलें, सहीफे और मुनव्वर किताब लेकर आए। हकीकत ये है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये है वो हकीकत जो याद रहे तो इंसान के सारे तफरके और नाचाकियां खत्म हो जाएं। हर जान मौत का मजा चखने वाली है, और क़यामत के दिन तुम अपने पूरे पूरे बदले दिए जाओगे। बस जो शख्स आग से हटा दिया जाए और जन्नत में दाखिल किया जाए, बेशक वो कामयाब हो गया, और दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे की जिंस है। तो मलकुल मौत से खौफ लीजिए, जो दिन में कई बार आकर आपको देख जाता होगा और एक दिन आके पकड़ेगा। तो खुद को यकीन दिलाइए, मेरे नफ्स को भी मौत आनी है, बस इसको याद रखें। जितना ज्यादा ये यकीन होता है, अपनी मौत को बंदा भूलता नहीं है। और दूसरी बात है कि जहन्नुम से बचा के जन्नत मिली फिर मजा है, वरना अगर कुछ देर जहन्नुम में दाखिल करने के बाद जन्नत मिली तो क्या मजा। तो क्या पता चला, इन आयात में इंसान की असल कामयाबी और नाकामी का मेयार इसके अमल हैं। इसी तरह असल कामयाबी जहन्नुम की आग से बचकर जाने की कोशिश करना है, दुनियावी जिंदगी को हमेशा रहने वाली समझ लेना एक फितना है। करें क्या, कसरत से अल्लाह को याद करना है ताकि जहन्नुम से निजात हो। दोबारा आजमाइश की बात, यकीनन तुम्हारे मालों और जानों से तुम्हारी आजमाइश की जाएंगी, और यह भी यकीन है कि तुम्हें इन लोगों की जो तुमसे पहले किताब दिए गए और मुशरिकों की बहुत सी दुख देने वाली बातें भी सुननी पड़ेंगी, और अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी इख्तियार करो तो यकीनन ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। दूसरा मुकाम है इसी एक सूरत में आज जो हमने पढ़ा के सब्र और तकवा की बात है। तो आजमाइशों में जो चीज़ बंदे को फ़ायदा देती है, जमाती है, वो सब्र और तकवा है। आप और मैं आज के इन मौजूदा हालात में जितना सब्र और तकवा सीख लेंगे उतनी जल्दी अल्लाह ताला हमें इस शर से महफूज करेगा। और अल्लाह ताला ने जब अहले किताब से अहद लिया कि तुम इसे सब लोगों से ज़रूर बयान करोगे और इसे छुपाओगे नहीं, तो फिर भी इन लोगों ने इस अहद को अपनी पीठ पीछे डाल दिया और इसे बहुत कम कीमत पर बेच डाला। इनका ये व्यापार यानी सौदा बहुत बुरा है। वो लोग जो अपने करतूतों पर खुश हैं और चाहते हैं कि जो उन्होंने नहीं किया इस पर भी तारीफें की जाएं, यानी सेल्फ प्रेजिंग बहुत अच्छी लगती है कुछ लोगों को, उन्हीं का जिक्र है। आप इन्हें अजाब से छुटकारे में ना समझिए, इनके लिए दर्दनाक अजाब है। आसमान और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। आसमान और जमीन की पैदाइश में और रात दिन के हेर फेर में यकीनन अकलमंदों के लिए निशानियां हैं। यहां से 190 से सूरत के आखिर तक आखिरी रुकू है। अल्लाह के नबी सल्लम सुबह उठने के बाद जो सबसे पहला काम करते थे अपने बिस्तर पर बैठते ही, वो ये आयतें पढ़ते थे। अभी आप गौर कीजिएगा, मैं चंद हिंट्स दे देती हूँ ताकि बार बार पीछे ना पलटना पड़े आपको। आप देखिए कि इन आयात में कायनात की निशानियाँ भी हैं, जिसको आज आप साइंस कह लीजिए, और गौर व फिक्र और तदब्बुर भी है। आज के दौर के फितनों के हल में एक ये चीज़ मतलूब है कि दुनिया की चीज़ों को, दुनिया के उलूम को पढ़ो और गौर व फिक्र करो और रब तक पहुँचो। यही है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक का पैगाम। पहली वही में भी यही था, बच्चे की पैदाइश के मरहले बताकर साइंस पढ़ा दी और कहा बिस्मि रब्बिका, तो इन दो को जोड़ना पड़ेगा। दीन की तालीम और दुनिया की तालीम एक जगह जमा करनी पड़ेगी, तो गौर व फिक्र है, रिसर्च है। और कहा पहले गौर करो फिर देखो, तो आपने भी इन सारी आयात को पढ़ते वक्त यही दुआ करनी है कि अल्लाह हमें इस कायनात पे गौर व फिक्र करते हुए तेरे तक पहुंचने की तौफीक दे। फर्क इतना है कि एक इस ईमान वाला गौर व फिक्र के बाद अल्लाह तक पहुंचता है, और एक गैर मुस्लिम इन चीज़ों पे गौर व फिक्र करने के बाद रब को ही मानना छोड़ता है और कहता है आई एम एथियस्ट, क्योंकि मुझे अब बहुत कुछ पता चल गया। तो इस शऊर के साथ सुनते हैं, आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात दिन के हेर फेर में यकीनन अकलमंदों के लिए निशानियां हैं। कौन है अकलमंद? उलुल अलबाब। और लुब कहते हैं अकल का गुदा, जैसे ब्रेन एक होता है ना, भेजा भेजा है असल में, लुब के अंदर ऐसी अकल जो मुशाहिदा करवाए फिर सही नतीजे पे पहुंचाए। और क्या नतीजा निकालते हैं वो इस पे, इन सारी चीजों पे, जो अल्लाह ताला का जिक्र खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर लेटे हुए करते हैं, और आसमानों और जमीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं और कहते हैं ए हमारे परवरदिगार, तूने ये बेफायदा नहीं बनाया। यानी ये दुनिया सिर्फ फन नहीं है, इसके पीछे एक मकसद है। तू पाक है, पस है रब, हमें दोजख के अजाब से बचा ले। ए हमारे पालने वाले, तू जिसे जहन्नुम में दाखिल करे, यकीनन तूने इसे रुसवा किया और जालिमों का कोई मददगार नहीं। अल्लाह हमें एक लम्हे के लिए जहन्नुम का मुंह ना दिखाना। दुआएं कर लीजिए, रोजे की हालत में भी कबूल होती हैं, कुरान पढ़ते हुए भी कबूल होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये वो रुकू है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पे पढ़ते थे। तो आज ही नियत कीजिए कि आज से चलिए पूरे रमज़ान में हम इस रुकू को सुबह उठ के ज़रूर पढ़ेंगे। ए हमारे रब, हमने सुना कि मुनादी करने वाला आवाज़ें बुलंद ईमान की तरफ बुला रहा है कि लोगो अपने रब पर ईमान लाओ, पस हम ईमान लाए। या इलाही, अब तू हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हमारी बुराई हमसे दूर कर दे और हमारी मौत नेकों के साथ कर दे, आमीन। ए हमारे पालने वाले माबूद, हमें वो दे जिसका वादा तूने हमसे अपने रसूलों की जुबानी किया है, यानी दुनिया की फतह और गलबा और आखरत की जन्नत। اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. دیکھیے محبت میں ڈوبی ہوئی دعائیں ہیں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان للایمان انامنوا بربکم فآمنا. ربنا، تڑپ سے پڑھیے، جوش سے پڑھیے، آپ کا دل پکارے گا کہ آپ کی دعائیں عرش پہ جا رہی ہیں. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا واتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. جب یہ دعا مانگی تو کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فاستجاب له، فاستجاب، قبول کر لی اللہ نے. فاستجاب لهم ربهم، پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی. دیکھیں فا میں فوراً ہے کہ ادھر بندہ دعا کرتا ہے ادھر اللہ قبول کرتا ہے. تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ ویسے ہی نزول فرما چکا ہوتا ہے. پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ تم میں سے کسی کام کے کرنے والے کے کام کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، میں ہرگز ضائع نہیں کرتا. تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، یعنی جینڈر ڈسکریمینیشن نہیں ہے. نیکی کا کام کوئی مرد کر رہا ہے یا ایک عورت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے. اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور بالیقین انہیں جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ثواب ہے. یعنی لوگوں سے کیوں ثواب مانگتے ہو؟ اور ثواب اجر کو کہتے ہیں. اللہ سے مانگو، تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے، یہ تو بہت تھوڑا فائدہ ہے. اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، اور نیکوکاروں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے. ایک بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے ایمان والوں کے لیے کہ جب وہ کفر کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ، نافرمانیوں کے ساتھ، فسق کے ساتھ لوگوں کو دنیا میں فلرش ہوتا ہوا دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک پیغام دیتے ہیں کہ اس کو فتنہ نہ بنانا اپنے لیے. جب تم گناہگاروں کو ان لیڈز دیکھو، جب تم ان کو کامیاب ہوتا دیکھو، جب تمہیں وہ کول نظر آئیں، جب تم ان کو پروفیشنل دیکھو، بڑی بڑی اسکرینوں پہ دیکھو، ان کو دنیا میں راج کرتا دیکھو، تو نہ سمجھنا کہ وہ کامیاب ہیں، کیونکہ اصل کامیابی تو پیچھے پڑ کے آئے. فمن زخزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. صرف دنیا کی چیزوں میں کامیاب ہونا کیا کامیابی ہے؟ آج آنکھیں بند کل سب کچھ چھین لیا، یہ تو ایک خواب ہے جو کسی کو دکھایا گیا کہ وہ بادشاہ بن گیا، آنکھ کھلتے ہی دیکھا تو اپنے بوریے پہ لیٹا. قبر میں فرشتے آپ سے نہیں پوچھیں گے کیا آپ کے بچوں کے کتنے ایز آئے، آپ کی بیٹیوں کے کتنی پیاری جگہوں پہ رشتے ہوئے، بہویں کتنی حسین تھی. یہ سب مل جائے تو اللہ کی نعمت ہے. لیکن اس کو اپنے لیے فتنہ نہ بنائیے، ان چیزوں میں نہیں لانا. تو فرمایا یقیناً اہل کتاب میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیا اور ان کی طرف جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں. ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رہو اور جہاد کے لیے تیار رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو. سورت کے خاتمے پہ چار نکاتی ایجنڈا ہے. ایمان والے کیا کریں، چند ہدایات ہیں. پوری سورت، پورا پارا بلکہ دیکھیے تو کتنی خوبصورت ہدایات سے تھا. مثلاً آیت 92 جو پارے کی پہلی آیت تھی، تو ہم نے دیکھا تھا کہ بڑے مشن کے لیے بڑی اور پسندیدہ چیز چھوڑنی پڑتی ہے. پھر آیت 103 میں ہم نے اللہ کی رسی کو تھامنے کی بات دیکھی، بات اسیمو بحبل اللہ. پھر آیت 110 میں امت کی ذمہ داریوں کی بات تھی کہ بہترین طریقے سے یہ کام کرو. آیت 144 میں رسول کی تعلیمات قیامت تک ہیں، اس کا ذکر تھا. اور آیت 160 میں اللہ کی مدد کس پہ آتی ہے، اس کا تذکرہ تھا. اب آپ کا میرا کام ہے اس پوری صورت میں جو پڑھا سنا اس سے کتنا خز کرتے ہیں. ایک خوبصورت صورت پوری ہوتی ہے تو اگلی خوبصورت شروع ہوتی ہے. نیکسٹ سورہ جس کا تھوڑا سا حصہ ہی اس پارے میں، اس کی زیادہ باتیں ہم کل اگلے پارے کے ساتھ لیں گے انشاءاللہ. تو سورت نساء، اس کا نام نساء، خواتین، عورتیں، نساتن امراتن کی جمع ہے، اس سے ہے، اس میں بہت سارے مسائل خواتین سے ہی متعلق ہیں، اور 167 آیات ہیں اس کی. ہم اس صورت میں انشاءاللہ جو کچھ جانیں گے اس کو ہم کل کے پارے کے شروع میں دیکھیں گے. ابھی آئیے ذرا صورت کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. صورت کے بارے میں چند باتیں لے لیجئے. تعارف ہے، ایک مستحکم خاندانی ڈھانچہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے، اس لیے یہ صورت خاندانی معاملات کے بارے میں مفصل احکام سے شروع ہوئی ہے، بلکہ اس کی پہلی آیت خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے. خاندانی نظام میں عورتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اس لیے صورت میں تفصیلی احکام عطا فرمائے ہیں، اس لیے صورت کا نام صورت نساء ہے. آیات کے عنوان دیکھ لیجئے، سب کا خالق ایک اللہ، یعنی پہلی آیت میں کتنے پیغام ہیں، سب ذات پات اور کہہ لیجئے کہ کاسٹ سسٹم کو ختم کیا گیا، سب ایک باپ سے ہو، یہ نہیں کہ کوئی ایک طرف سے پیدا ہوا اور کوئی دوسرے سے. دوسری بات، سب کے والدین آدم اور حوا ہیں، اور رحمی رشتوں کی اہمیت. شعور سے سنیے گا، دو دفعہ اس میں تقویٰ کا تذکرہ ہے. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. کیا پتہ چلا، صرف تقوی انسانوں کو انسانوں کے حقوق ادا کرنے پہ مائل کرتا ہے. اور یتیموں کا مال ان کو دے دو، اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. معاشرے کے پسے ہوئے لوگ، یتیم، ان کے حقوق کی بات ہے ادھر. اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے، تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو، دو دو، تین تین، چار چار سے. لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، جو تمہاری ملکیت کی لونڈی، یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف جھکنے سے بچ جاؤ. مرد کی ایک سے زائد شادیاں ہمارے کلچر میں ناپسندیدہ ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دوسری شادی تو ناپسندیدہ ہے، لیکن افیئرز، اور خاص طور پہ اب میرٹ لوگوں کے افیئر جو ہمارے ملکوں میں بھی عام ہو گئے، ذرا سا اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. نکاح کی ایک اہم چیز مہر، اس کا تذکرہ. اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھاؤ پیو. بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دو، جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اڑاؤ، اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو. اور یتیموں کو ان کے بالغ ہونے تک سدھارتے اور آزماتے رہو، پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو. مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں، ہاں مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طرح سے کھا لے، پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو، دراصل حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. غزوہ احد کے بعد یہ صورت نازل ہوئی تو 70 صحابہ کی شہادت سے گھر گھر میں یتیم تھے اور بیوائیں تھیں، انہی کے حقوق کی بات ان آیات میں ہے. اب آگے وراثت کا ذکر ہے، جس کو علم الفروض بھی کہتے ہیں. ایک سٹریچ میں سنیے گا اور دعا کیجئے گا کہ اس علم کو سیکھیں. علم الفروض یعنی ہر ایک پر یہ فرض ہے، اور دعا کیجئے کہ کہیں بھائی بہنوں کا حصہ نہ کھا جائیں، اور اسی طرح چچا بھتیجوں کے حصے نہ کھا جائیں. دنیا میں کتنا کو لے لیں گے، آخرت میں کیا ہوگا، اس کا آج اندازہ بھی نہیں ہو سکتا. یوصیکم اللہ فی اولادکم. ماں باپ اور خواہش و قارب کے ترکے میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی. جو مال ماں باپ اور خواہش و قارب چھوڑ کر مریں، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے. جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم ان میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو، اور ان سے نرمی سے بولو. چاہیے کہ اس بات سے ڈریں، ہر وہ بندہ جو کسی کے مال وراثت کا ذمہ دار ہے. وہ اس آیت کو غور سے سنیں. چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننے ننے نہ تمام بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا، تو ان کی چاہت کیا ہوتی. یہ ہے سول سرچنگ کوسچن. दूसरे को उसकी जगह पे खड़ा कर दो जहां दूसरा खड़ा था। बस अल्लाह तला से डर कर जची तुली बात कहा करे। जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में आग ही भर रहे हैं और अन करीब वो दोजख में जाएंगे। अल्लाह तला तुम्हें औलाद के बारे में हुक्म करता है कि एक लड़के का हिस्सा दो दो लड़कियों के बराबर है, और अगर सिर्फ लड़कियां ही हों और दो से जायद हों तो इन्हें माले मतरूका का दो तिहाई मिलेगा, और अगर एक ही लड़की हो तो इसके लिए आधा है, और मैयत के माँ बाप में से हर एक के लिए इसके छोड़े हुए माल का छठा हिस्सा, अगर इस मैयत की औलाद हो। अगर औलाद ना हो और माँ बाप वारिस होते हो तो इसकी माँ के लिए तीसरा हिस्सा है। हाँ, अगर मैयत के कई भाई बहन कई भाई हों तो फिर इसकी माँ का छठा हिस्सा है। ये हिस्से इसकी वसीयत की तकमील के बाद हैं, जो मरने वाला कर गया हो या कर्ज अदा करने के बाद। तुम्हारे बाप हो या तुम्हारे बेटे, तुम्हें नहीं मालूम कि इनमें से कौन तुम्हें नफा पहुंचाने में ज्यादा करीब है। ये हिस्से अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करना है। बेशक अल्लाह ताला पूरे इल्म और कामिल हिकमतों वाला है। सच है ना? देखिए, मुख्तसर तौर पर दो आयतों में अल्लाह ताला ने औलाद में बेटे बेटी माँ और बाप के हिस्से भेज दिए। तो विरासत के अहकाम क्या हैं? पहली बात है कि मर्द और औरत दोनों हकदार होते हैं। ये कहना कि बेटी को जहेज दे दिया अब उसको विरासत नहीं देंगे, ये झूठ है। मर्द का इस औरत के हिस्से से दुगना होता है। बेटे का बेटी में तनासुब है और विरसा कम हो या ज्यादा तकसीम करना पड़ेगा। अब अगली आयत में शौहर और बीवी के माल में एक दूसरे का क्या हक है? तुम्हारी बीवियां जो छोड़ मरे और इनकी औलाद ना हो तो आधो आध तुम्हारा, अगर इनकी औलाद हो तो इनके छोड़े हुए माल में से तुम्हारे लिए चौथाई हिस्सा। इनकी वसीयत की अदायगी के बाद जो वो कर गई हो या कर्ज के बाद, और जो तरका तुम छोड़ जाओ इसमें से इनके लिए चौथाई है, 1/4। अगर तुम्हारी औलाद ना हो और अगर तुम्हारी औलाद हो तो फिर इन्हें तुम्हारे तरके का 8वां यानी 1/8 पार्ट मिलेगा। इस वसीयत के बाद जो तुम कर गए और कर्ज की अदायगी के बाद, जरा सोचिए, ये इससे कोई दे सकता था अगर अल्लाह ताला ने ना सिखाए होते तो? और जिनकी मीरास ली जाती है वो मर्द जो औरत का लाला हो यानी इसका बाप बेटा ना हो और इसका एक भाई और एक बहन हो तो इन दोनों में से हर एक का छठा हिस्सा, अगर इससे ज्यादा हो तो एक तिहाई में सब शरीक हैं। इस वसीयत के बाद जो की जाए और कर्ज के अदा करने के बाद, जबकि औरों का नुकसान न किया जाए, ये मुकर्रर किया हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से, और अल्लाह ताला दाना है और बर्दबार है। चंद आयतों में सब हिस्सेदारों को उनके हिस्से दे दिए। अब इससे अगली जो आयात जा रही है इसका जरा सुनवान समझिएगा। बदकारी की सजा इस्लामी अहकामात के मुताबिक कैसे होगी? ये यहाँ इसका इन बिटवीन फेज है, यानी सूरत नूर नाजिल होने से पहले एक फहाशी और बदकारी के मुर्तकिब को क्या सजा दी जाती थी वो इधर है। फिर इसी में हम पढ़ेंगे कि नादानी में की गई बुराई पर सच्ची तौबा अल्लाह कबूल फरमाता। कुछ लड़के लड़कियां जवानी में कुछ गलत काम कर देते हैं या हो जाते हैं तो उनके लिए हमेशा दरवाजा खुला है, शर्त यह कि आइंदा उस काम को छोड़ दें। फिर मौत से पहले तौबा का दरवाजा खुला है, और तलाक देने की सूरत में बोहतानबाजी से गुरेज करना चाहिए। आइए इसको पढ़ते हैं। ये हदें अल्लाह की मुकर्रर की हुई हैं, और जो अल्लाह ताला की और इसके रसूल की फरमा बरदारी करेगा इसे अल्लाह ताला जन्नतों में ले जाएगा, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह हमें अता फरमाए। और जो शख्स अल्लाह ताला की और उसके रसूल की नाफरमानी करे और इसकी मुकर्रा हदों से आगे निकले, इसे जहन्नुम में डाल देगा जिसमें वो हमेशा रहेगा, और ऐसों के लिए रुस्वा कुन अज़ाब है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम। तुम्हारी औरतों में से जो बेहयाई का काम करें, इन पर अपने में से 4 गवाह तलब करो। अगर वो गवाही दें तो इन औरतों को घरों में कैद रखो, यहाँ तक कि मौत इनकी उम्रें पूरी कर दे या अल्लाह ताला इनके लिए कोई और रास्ता निकाले। जैसे आजकल लॉकडाउन है ना, कि कोरोना ना हो जाए, तो एक छोटा सा सबक ले लीजिए। बुराई, बेहयाई और मुआशरे में न्यूडिटी और जिस्म परस्ती और इसी तरह से जिस्म फरोशी करने वालों को भी कैद कर दीजिए, तो ये वायरस फिर बाहर नहीं आएगा। जिस तेजी से ये आज फैल रहा है, और मुसलमान मुल्कों में भी, अल्लाह ताला बचा के रखे। तुम में से जो 2 अफराद ऐसा काम कर लें इन्हें ईजा दो, अगर वो तौबा और इसलाह कर लें तो इनसे मुंह फेर लो। बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वाला, अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। तो तौबा को खेल ना बनाओ, बल्कि क्या है, कुरान पाक में खूबसूरत तरीन मुकाम है ये तौबा के जिमन में, आयत नंबर 17 से। अल्लाह ताला सिर्फ इन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो बवजह नादानी कोई बुराई कर गुजरे फिर जल्द इससे बाज आ जाए और तौबा करें तो अल्लाह ताला भी इनकी तौबा कबूल करता है। अल्लाह ताला बड़े इल्म वाला हिकमत वाला है। इनकी तौबा नहीं, ये दूसरी किस्म के लोग हैं जो बुराइयां करते चले जाएं यहां तक कि जब इनमें से किसी के पास मौत का वक्त आ जाए तो कह दे कि मैंने अब तौबा की। और तीसरी किस्म, और इनकी भी तौबा कबूल नहीं, जो कुफर पर ही मर जाए। यही लोग हैं जिनके लिए हमने अलमनाक अजाब तैयार कर रखा है। तो क्या समझ आया कि कबूलियत तौबा की शराइत क्या है? सच्ची तौबा दरअसल फौरी तौबा का नाम है, और तौबा के असल मानी पलटने यानी गुनाहों को छोड़ने के हैं। इसके बाद पारे के आखिर तक अरब माशरे में खवातीन पे जो जुल्म होता था उसकी मुख्तलिफ किस्मों का जिक्र है। ऐ ईमान वालों, तुम्हें हलाल नहीं कि जबरदस्ती औरतों के विरसे को ले बैठो। इन्हें इसलिए ना रोक रखो कि जो तुमने इन्हें दे रखा है इसमें से कुछ ले लो। हाँ, ये और बात है कि वो कोई खुली बुराई या बेहयाई करें, इनके साथ अच्छे तरीके से गुजर बसर रखो। गो तुम इन्हें नापसंद करो, लेकिन बहुत मुमकिन है कि तुम किसी चीज को बुरा जानो और अल्लाह ताला इसमें बहुत भलाई कर दे। दुआ कीजिए ये लॉकडाउन और कोरोना भी इसी असूल के तहत बहुत अच्छे फवायद दे और हम आज उसको समझ ही ना पा रहे हो। और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी करना ही चाहो और इनमें से किसी को तुमने खजाने का खजाना दे रखा हो तो भी इसमें से कुछ ना लो। जी, तोहफा देकर लेने वाला हदीस में एक मिसाल से मिलता है कि वो अपनी ही कह को चाट लेने वाले एक जानवर की तरह। तो कभी ऐसे मौके आ जाएं तो कभी पिछले दिए लिए वापस न लीजिए। क्या तुम इसे नाहक और खुला गुनाह होते हुए भी ले लोगे? तुम इसे कैसे ले लोगे हालांकि तुम एक दूसरे को मिल चुके हो और इन औरतों ने तुमसे मजबूत अहदों पैमान ले लिए हैं। और इन औरतों से निकाह ना करो जिनसे तुम्हारे बापों ने निकाह किया है, मगर जो गुजर चुका हो गया, यानी जाने दो। ये भी इस्लाम का खूबसूरत तरीका, इल्ला मा कद सलफ, गड़े मुर्दे न खोलो। ये बेहयाई का काम और बुगस का सबब है और बड़ी बुरी राह है। हराम की गई तुम पर तुम्हारी माएं और तुम्हारी लड़कियां और तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियां, तुम्हारी खालाएं, भाई की लड़कियां और बहन की लड़कियां और तुम्हारी वो माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो। अबदी मुहर्रमात का जिक्र है। और रजाई बहनें और सासें हराम कर दी गईं, और जिन औरतों से तुम मुबाशरत कर चुके हो इनकी लड़कियां जिन्हें तुम परवरिश करते हो, मुराद सौतेली बेटी हो, वो भी तुम पर, वो भी हराम है। हाँ, अगर इनके साथ तुमने मुबाशरत ना की हो तो इन लड़कियों के साथ निकाह कर लेने में तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और तुम्हारे सुलभी बेटों की औरतें भी, यानी बहू और दो बहनों का इकट्ठा करना भी हराम है। मगर जो हो चुका सो हो चुका, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। हदीस में दो और भी रिश्ते हैं, फूफी भतीजी और खाला भांजी। तो देखिए एक मैप है, सात नस्बी मुहर्रमात, वो औरतें जिनसे निकाह हमेशा के लिए हराम है। नंबर एक, माएँ, बहनें, बेटियां, फूफियां, खालाएं और भतीजियां और भांजियां। फिर आगे इसमें सगे सौतेले सब चलते जाएंगे, इसकी भी डिटेल है। तो क्या पता चला? पारा यहाँ पूरा होता है अल्लाह ताला के साथ, शुक्र के साथ। कल से इंशाल्लाह हमारा पारा टू पारा चलेगा, और यही तदरीज थी जो उन लोगों के लिए रखी गई जो नए नए शामिल हो रहे हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह रमज़ान भी है, तो अल्लाह ताला हमें मज़ीद लोगों को इस दावत को देने वाला बनाए। चंद चीज़ें जो पारे में ली हैं खुलासे के तौर पे लेते हैं, जो जाना चाहें चले जाएं, और जो एक्स्ट्रा वक्त दे रहे हैं उनके लिए ये सदका बनेगा। अल्लाह ताला इसकी बेहतरीन जजा दे। तो हबलुल्लाह को पकड़ने के लिए अल्लाह ताला की हिदायत, हमने इस बारे में क्या सीखी? पहली बात है कि दुनिया और माल की मोहब्बत को दिल से निकालना है, अहले किताब जैसा नहीं बनना, इनकी पैरवी नहीं करनी, अहले किताब को अपना राजदार नहीं बनाना, तफरका बाजी से परहेज करना है, काफिरों और इनके हथियारों से नहीं डरना, अहले किताब की तकलीफ दे बातों पर गुस्से को पीना है, और दुनिया में काफिरों के चलने फिरने यानी तरक्की करने से मरूब नहीं होना। जेम्स ऑफ द पारा, सुनहरे हरूफ, महबूब तरीन शय का इन्फाक, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बुन। नियत करते कोई एक मनपसंद चीज, छोटी सी चाहे कीमती ना भी हो, आज की इस बात को सुनकर अल्लाह के रास्ते में लगा दें। फिर अल्लाह की रस्सी कुरान पाक को पकड़ना, तफरकाबाजी की ममानियत, अमीर और जिम्मेदारों को हिदायत, उम्मत की जिम्मेदारियां, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करना और विरासत के अहकाम। आपको यकीन आता है इतने थोड़े से वक्त में हमने इतनी चीज़ों को कवर किया है? ये सिर्फ अल्लाह के कलाम का ही एक मुजज़ा है। फितने की बातें तो बहुत हुई, और फितना क्या था? ना इत्तफाकी, तफरकाबाजी, गिरोही तासुब। तो आइए जरा चंद हल ले लेते हैं, सॉल्यूशंस, फितने के हल। लोगों को खैर की तरफ बुलाना है, यानी कुरान और सुन्नत, और अमल बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करना है, अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है, दुनिया और दीन में मेहनत और मुजाहिदा करके आला मिसालें कायम करनी है, अपने ईमान की हिफाजत करते हुए युसारेऊ नफिल खैरात करना है। अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर के अजीम मकसद से आगही हासिल करनी है, तफरकाबाजी से बचते हुए आपस में इत्तेहाद कायम करना है, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है, और इस्तकामत से काम लेना है, खशियत इलाही और तकवा वाली जिंदगी की दुआ करनी है। इल्म नहीं बचाता, अल्लाह का खौफ बचाता है, इस बात को समझना है, अपने अंदर इखलास पैदा करके ताल्लुक बिल्लाह को मजबूत करना है, अल्लाह ताला का तकवा और खशियत पैदा करनी है, कुरान की रस्सी को मजबूती से थामना है, और इस शेर को अपनी जिंदगी का स्लोगन बना लेना है, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसी लिए मुसलमान, मैं इसी लिए नमाजी। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जती अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।